प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। बृहद भागवतामृत की जय। सनातन गोस्वामी की जय। गौर प्रेमानंदी हरि ऑल ग्लोरियस टू असेंबली ऑल ग्लोरियस टू असेंबली ऑल ग्लोरियस टू असेंबली ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु श्री गौरांग श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश धारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव चैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 जयति जयति नमानंद रूपं मुरारी विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि शक्रदात्तं मुक्तिदं प्राणिनायत् परमम अमृतमेकं जीवनं भूषणं मे। आनंद स्वरूप श्री श्री कृष्ण नाम की जय हो जय हो। जो वर्णाश्रम धर्म ध्यान एवं पूजादि के अनुष्ठान में उत्पन्न होने वाले यत्नों एवं दुखों से छुटकारा देने वाला है, किसी प्रकार एक बार भी उच्चारित होने पर यह श्री कृष्ण नाम प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं यह एकमात्र परम अमृत स्वरूप श्री कृष्ण नाम ही मेरा जीवन एवं भूषण स्वरूप है। श्री नाम प्रभु की जय। प्रचोदितायन पुरा सरस्वती पीतन्मताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि सलक्षणायत प्रादुर्रघुत्किलाश्चित समीरिषीणां ऋषभ प्रशीतताम् भूतिर्महद्भिः येमां पुरविभो निर्मायशीति यदमूढ पुरुषः भक्ति गुणां षोडश षोडशात्मकः सोऽलं प्रशस्त भगवन् पचांसि मे। हरे कृष्ण। आज तृतीय दिवस तृतीय सत्र हैं। सभी भक्तजनों का सादर स्वागत है। प्रसंग बृहद भागवतामृतम, इसके माध्यम से हम सबको इस सत्संग की प्राप्ति हो रही है। पात्र परिचय के रूप में ये कहा गया है उत्तरा श्रोता है एवं परीक्षित वक्ता है, माता पुत्र का संवाद। सात अध्यायों में प्रथम खंड संपन्न हो रहा है और अंतिम कड़ी पे महाराज परीक्षित कृपा पात्रों का वर्णन करते करते ब्रजवासी और ब्रज की जो ललनाएं गोपियां उनको सर्वोच्च शिखर पर रखते हैं और उन्हें पूर्ण कृपा पात्र के रूप में संसार में घोषित करते हैं। वास्तव में भाव तो सनातन गोस्वामी जी का ही है और उन्होंने अपने भाव नेत्र में दिव्य नेत्रों से इस सत्य का साक्षात्कार किया था। और जो उन्होंने साक्षात्कार किया था उसी बात को यहाँ पे हम सबको, सभी जनमानस को, जन समाज को बतला रहे हैं। तो कल की चर्चा में हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी, क्रम से नारद मुनि श्री हनुमान तक पहुंच गए हैं। श्री हनुमान जी जो है दास्य भक्त के आचार्य माने जाते हैं और श्री राम जी के प्रति गौरव बुद्धि रखते हैं। सदैव प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार हमारे प्रभु है और हम उनके नित्य दास हैं। इसका नाम है गौरव बुद्धि, बड़ा आदर, बहुत सम्मान रखते हैं। नारद जी से कहते हैं, देखिए नारद जी, वैसे हम श्री राम के, श्री प्रभु के कृपा के पात्र नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि अयोध्या वासी उनको सबको लेके चले गए और हमको नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए, लगता है कि हम बानर ही हैं, हम सामान्य बानर हैं। और अभी भी द्वारका में प्रभु विराजमान है और नित्य दर्शन हमें प्राप्त नहीं है, कभी कभार बुलाया करते हैं। जैसा कि प्रातःकाल सत्संग में हमने कहा था, जब इनमें गर्व बहुत अधिक हो गया था, सत्यभामा जी में, सुदर्शन में और गरुड़ जी में, तो उस समय प्रभु ने उनका स्मरण किया था। तो हनुमान जी ये दैन्योक्ति के द्वारा बतलाना चाहते हैं कि हम उतने प्रिय पात्र नहीं है। और वे पांडव जो अभी विराजमान है, वे प्रभु के बड़े कृपा के पात्र हैं। क्या कारण है? तो हनुमान जी बड़े विनोद से कहते हैं, सुनिएगा क्या कहते हैं, यथार्थ रूप में हम उपस्थापन करना चाहते हैं इन वाक्यों को। हनुमान जी कहते हैं, अरे पांडव, उनका उद्गार, अरे पांडव, तुमने प्रेम में आसक्त होकर सब आचार विचार छोड़ दिया है, सब कुछ भुला दिया, अपने मेरे प्रभु को दूत और साथी तक भी बना दिया। अरे पांडवों, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, आप कोई ऐसा अलौकिक जादू मंत्र अथवा औषधि जानते हो जो महान मोहन करने वाले श्री भगवान को भी मोहित कर देती है। पूरा विश्व जानता है उनके हाथ में मोहन बंसी है। जब वो बंसी बजाते, शिलाखंड पिघलने लग जाते हैं। ऐसी अलौकिक शक्ति है उस बांसुरी में, उसी का नाम है मोहन बंसी। और धारण करने वाले साक्षात मोहन, मोहयतीति मोहन, अपने आप को भुला देते हैं वो, इसीलिए उनको मोहन कहते हैं। हनुमान जी अत्यधिक प्रेम के कारण पांडवों की ब्याजस्तुति करते हैं। ब्याजस्तुति शब्द का अर्थ होता है सुनने में उल्टा और भाव में और कुछ है, कहने में कुछ और भाव में कुछ और, उसी का नाम है ब्याजस्तुति, शास्त्र में कहा गया है। भक्ति रसामृत सिंधु जिन लोगों ने अध्ययन किया होगा, वहां पर उनको ब्याज स्तुति उपलब्ध हो सकती है। स्मेरा भंगी त्रय परिचितम साची विस्तीर्ण दृष्टि बंसी न्यस्ता घर किशलेम उज्जलम चंद्र किरण गोविंदाख्यम हरितनुमितो केशी तीर्थोपकंठे मा प्रक्षिष्ठा सखी जति तब बंधु संग अस्ति रंग। रूप गोस्वामी ब्याज स्तुति का एक दृष्टांत देते हैं। अरे सखी, यदि तू परिवार के साथ आनंद में रहना चाहती हो तो तू उस यमुना के तट पर मत जाना। ठीक है, हम जाएंगी पानी भरने, पनघट पे तो जाना ही है। ठीक है, जाओगी तो उस केसी घाट तक मत जाना, कभी कभार जरूरत भी पड़ती है चली जाएंगी। ठीक है, जाओगी तो वो जो वहां पर त्रिभंग ललित थान पे खड़ा है मदन मोहन, उनकी तरफ मत निहारना। मान लो सखी पूछती है, निहारने से क्या होगा, बस तुम्हारा संसार डूब जाएगा। मां प्रखिष्ठा सखी यदि तब बंधु संग अस्थिर रंग, बंधु माने अपने परिवार पति, अगर तू सुख से संसार करना चाहती है तो केसी घाट पर मत जाना, उस गोपाल की तरफ मत निहारना। अगर तू एक बार निहारेगी तो संसार में आग लग जाएगी, तो किसी किनारे की नहीं रहेगी। इसका अर्थ ये देखो सुनने में उल्टा है, इसका सटीक अर्थ यही है कि तुम जाओ और केसी घाट पर उस गोविंद को निहारो और तुम्हारे संसार में आग लग जाए। अर्थात रूप गोस्वामी का कहना है केसी घाट पर श्री मदन मोहन का दर्शन करना यही जीवन का परम और चरम लक्ष्य है, इसी का नाम है ब्याज स्तुति। सुनने में कुछ और समझने में कुछ और। तो हनुमान जी कहते हैं कोई जादू मंत्र तुम लोगों ने जाना होगा, इसीलिए तो उनको तुमने सारथी बना लिया। हाँ, इतने बड़े जिनको जगदीश्वर कहा जा रहा है और वही रथ हांक रहे हैं श्री अर्जुन जी के, हम लोगों में से भी कोई व्यक्ति अपने जो दास है उनका ड्राइवर बनना कभी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। यही भगवान की भगवत्ता है, प्रभु की भगवत्ता बैकुंठ में रहने से ये कोई संत नहीं मानता। ठीक है, बड़ा आदमी बड़े मकान पर रहता है, ऊंचा आदमी है ऊंची मंजिल पर रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मनमोहन सिंह जी अपने जो राष्ट्रीय राष्ट्रभवन है राष्ट्रपति भवन, वहां पर सौभाग्य से रह रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु वे आकर किसी गरीब के झोपड़ी में आतिथ्य स्वीकार करते हैं, ये उनका बड़प्पन माना जाएगा। तो भगवत्ता सिद्ध होती है माधुर्य में, गोलोक में विहार करने वाले वैकुंठपति वृंदावन के धूल में, यमुना के पुलिन में, उस उपवन में बाल गोपाल ग्वालों के साथ विहार कर रहे हैं, ये उनकी भव्य उनका बड़प्पन है। इसलिए सभी कहते हैं रामचंद्र से तुम मिल नहीं सकते हो। नरसिंह भगवान के हुंकार सुनकर के ब्रह्मा जी भाग जाते हैं, हम कहां तक जाएंगे। लेकिन ये बाल गोपाल मदन मोहन नंद को छोड़ा ये यमुना के घाट पर घूमता है। ब्रज के संत कहते हैं बस वृंदावन आने के बाद उनसे मिलना कोई कठिन नहीं होता, केवल हमको वृंदावन जाना है, फिर गलवाही तो वो दे देता है। भाव यही है कि एक वैश्य बालक है, एक सामान्य स्तर का है, उनसे मिलना बड़ा आसान है, राजाओं से कोई नहीं मिल सकता, इसलिए उनको मर्यादा कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ये विचार है, सामान्य लोग से देखो आप मिल सकते हो, परंतु इस मुंबई के जो मेयर है उसके साथ मिल नहीं सकते। इसीलिए कविराज गोस्वामी ने जब भगवत्ता सिद्ध करी, उन्होंने कहा माधुर्य भगवत्ता सार, ऐश्वर्य को भगवत्ता नहीं बतलाया, ऐश्वर्य भगवत्ता नहीं है, माधुर्य भगवत्ता है, बड़ा होकर के छोटी लीला कर रहा है। यमुना में विहार करना, गिरिराज पर चढ़ जाना, आम कटहल तोड़ करके खा जाना, हाथ में दधी बात लेकर खा रहे, ब्रह्मा जी को तो यही यही मोह में डाल दिया। श्री ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये कैसे ईश्वर है, बच्चे लेकर के हाथ से खा रहे हैं और वही झूठे को ये खा रहा है, ये ईश्वर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यही है मोह है। सामान्य वस्तु में मोह पैदा कर दे। बचपन में हमने एक प्रश्न पढ़ा था, एक बार स्विट्जरलैंड में चित्रकारों में प्रतियोगिता हुई, बहुत बड़े बड़े चित्रकार आए थे,
तरह तरह के चित्र थे। एक व्यक्ति जो वो सबसे बढ़िया चित्रकार, दो रह गए थे, तो उनमें से एक ने ऐसा चित्र बनाया था पर्दे पर, इस कैनवस पर अंगूर का गुच्छा बनाया था, अंगूर लटका हुआ है, और वो इतना स्वरूप को उसने अंकित कर दिया था कि वास्तव में पक्षी आकर के उस पर चोंच मारने लगे, तो तालियां बजने लगी, वाह 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 कितने बढ़िया चित्रकार है, पक्षियों को भी भ्रम में डाल दिया ये अंगूर, पुआ करके चोंच मार दिया, हजार हजार लोग थे। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। अंतिम कड़ी में एक चित्रकार को बुलाया गया, उसने कहा जिस चित्रकार की प्रशंसा हुई, वास्तव में हम तो एक सामान्य चित्रकार है, उनको बुलाइए वो हमारे चित्र का उद्घाटन कर दे, पर्दा उन्मोचन कर दे। तो उनको बुलाया गया, वो बड़े दंभ के साथ आए, बड़ी शान के साथ आ रहे हैं, प्रशंसा भरी सभा में, लाखों जनता में उनकी प्रशंसा हो रही है। आकर के जब पर्दा उठाना चाहते थे पर पर्दा उठ नहीं रहा था, बहुत प्रयास कर रहे थे, चश्मा लगा लाकर देख रहे थे कहां उसकी परत है, ऐसे हाथ लगा रहे थे लेकिन पर्दा कहे उठे, पर्दा नहीं उठ रहा था। थोड़ी देर के बाद उनको समझने में देर नहीं हुई है, वो पीछे जाकर के बैठ गए, तो लोगों को भी समझने में देर नहीं लगी, तालियों की गड़गड़ाहट छूटने लगी। क्या बात है, आप लोग समझ गए होंगे, लोगों ने कहा इनका चित्र पक्षियों को भ्रम में डाल दिया, परंतु वो उनका चित्र स्वयं चित्रकार को भ्रम में डाल दिया, ये विशेषता है। चित्रकार का भ्रमित होना यह विशेषता है। श्री राम जी के लीला में ब्रह्मा जी कभी मोहित नहीं हुए थे, लेकिन वो ब्रह्मा जी मोहित हो रहे हैं। नौमेड्यते अभ्र बपुष तडित अंबराय गुंजावतंस परिपेच्छल सम्मुखाय वन्य स्रजे कवल अवेत्र कवल कवल, दूध भात दही भात हाथ में रखकर खा रहे हैं, एक में टेंटी का अचार, एक में मिर्ची का अचार, एक में नींबू का अचार, एक में आमले का अचार, बाल सखा ले खा रहे हैं उसी पर, फिर खोस रहे हैं, फिर कन्हैया उस आचार को थोड़ा चबा रहे हैं। ब्रज का क्या भाव है, रोटी और आचार और तो कुछ है नहीं, मोटी मोटी रोटी और उसके साथ लंबी मोटी तगड़ी मिर्ची का अचार, बस ब्रह्मा जी मोहित हो गए। वैकुंठ का वैभव इनको अच्छा नहीं लगता, यही बात हनुमान कहते हैं, अरे पांडव तुमने कुछ ना कुछ जादू डाल दिया है कि तुम्हारे सारथी बन गए, उछल कूद करके नाचने लगे। और नारद जी से कहे, हे नारद जी आप ऐसा मत समझना कि हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, बचपन से ही उन्होंने विवाह नहीं किया, नारद जी ने भी विवाह नहीं किया, कई लोग हैं ब्रह्मा जी के कई पुत्र हैं जो विवाह नहीं किए, प्राय 9 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के जिन्होंने विवाह नहीं किया। तो हनुमान जी कहते हैं हम लोग तो बुद्धिहीन बानर है, हम क्या प्रभु की महिमा जाने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इसीलिए आप ऐसा मत समझिए कि पांडव लोग घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं अब उनके पास क्या जाएंगे, मायाग्रस्त है, नहीं नहीं ऐसा समझिए मत, ऐसा अपराध मत करना। तो उनका कहना है जाओ उनके पास। तो मानो नारद पूछे क्यों, तो हनुमान जी कहते हैं जिस प्रकार भूखे व्यक्ति को भोग रुचते नहीं है, तरह तरह की माला दी जाए, चंदन का लेप चढ़ाया जाए, सुंदर वस्त्र आभूषण दिया जाए, उनको बिल्कुल जो भूखा आदमी है उनको इन चीजों से कोई रस नहीं आता, इसी प्रकार पांडव जो है उनको भक्ति का रंग इतना चढ़ा हुआ है, इतना चढ़ा हुआ है, और उस भक्ति से ही अपना शुद्ध बुद्ध को खो बैठे हैं, परिवार में उनकी रुचि नहीं है। आप जाइए एक बार पांडवों को तो देखिएगा। तो नारद जी श्री पांडवों का यश गान करते हुए पांडवों से मिलने आते हैं। इस प्रकार से चौथे अध्याय की परिसमाप्ति होती है, पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा समय है, छू छू करके 5-6-7 तक हमको पहुंचना है, 5-6-7 तीन अध्याय पे। तो ये पंचम अध्याय में केवल पांडवों का गुणगान है, विस्तार रूप में श्री नारद जी पांडवों का गुणगान करते हैं। तो उसी समय जिस समय पांडव के आंगन में, पांडव के उस राजधानी में श्री नारद जी पहुंचते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं उस समय युधिष्ठिर एक मंत्रणा कर रहे थे, बहुत दिन हो गए श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, अच्छा होगा कोई ना कोई यज्ञ का आयोजन किया जाए और इसी बहाने श्री कृष्ण को बुलाया जाए, वो आएंगे और उनका दर्शन हम करेंगे। इस प्रकार मंत्रणा कर रहे थे श्री नारद जी, श्री नारायण नाम का जप करते हुए वहां जाकर के पहुंच गए। तो परीक्षित महाराज जी अपनी मां से कहते हैं, लोकपावन परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मपुत्र नारद जी का स्वागत करने युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे, परंतु नारद जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। जो अर्घ्य थाली थी उस अर्घ्य थाली लेकर के साक्षात नारद जी युधिष्ठिर की पूजा करने लगे। ये वैष्णव की महिमा है। नारद जी दिखा रहे हैं कि कितने निरभिमानी है। यथा शब्द में लिखा हुआ देखिएगा, परीक्षित जी कह रहे हैं, हे माता, युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी के पूजन के लिए पहले की तरह सब सामग्रियां इकट्ठी की थी, परंतु उस सामग्री से श्री नारद जी ने उल्टा आपके ससुर श्री युधिष्ठिर जी की आदियों का उनके सेवकों सहित पूजा किया। केवल युधिष्ठिर की पूजा नहीं की, उनके अन्य भाइयों के साथ पूजा किया। ये है निराभिमानता। अपनी अमानी हया आने दिवे मान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। यही हमारा भक्ति सूत्र है, यही आस्तिकता है। वास्तव में आस्तिकता का अर्थ यह नहीं है कि हम एक अंश को ग्रहण करेंगे एक अंश को छोड़ देंगे। आस्तिकता का सामूहिक अर्थ है संपूर्ण शास्त्र में जो प्रतिपादित तत्व है उसको पूर्ण आधार के रूप में ग्रहण करना, निराधार नहीं करना। अर्थ कुकुट न्याय का आश्रय नहीं है। सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतक्षि शिरोमुखम सर्वत्र श्रुतिमाल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ये श्रीहरि की परिभाषा है। इसलिए आज का संसार जो पाप से रहित होने के लिए बहुत कुछ प्रचार कर रहा है, यदि यही सूत्र सबको बताया जाए तो कोई भी व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। ये निष्पाप रहने का सूत्र यही है। व्यक्ति पाप तभी करता है जब वो ये समझता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। यदि उसके दिल में, उसके हृदय में ये मंत्र गूंजता है, सर्वत्र श्रुति मल्लोके, सर्वता श्रुति, श्रुति माने कान, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको ढक करके आवृत करके उस वो परमात्मा विराजमान है, तो गलती कहां करेगा। गलती व्यक्ति तब करता है जब साक्षियों का निरादर होता है, साक्षी को नहीं मानता। अजामिल के उस प्रसंग में श्री यमदूत कहते हैं एक व्यक्ति के 13 साक्षी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 13 साक्षी, सब हमारे कर्मों के साक्षी है, एक एक साक्ष्य देंगे, दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए सुखदेव कहते हैं, छोटे पाप का छोटे प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़े प्रायश्चित, और सर्वोच्च प्रायश्चित है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निहार भी वो भास्कर। जैसे सूरज तपन अपने ताप से निहार कोहरा को अपसारित कर देता है, नष्ट कर देता है, वैसे ही हरिनाम समस्त पाप को नष्ट कर देता है। ये हरिनाम रूपी सूर्य है, निष्पाप होने का यही भाव है। वेद मंत्र भी यही कहता है, गीता भी यही कहती है। तो नारद जी बड़े निरभिमानी होकर के उनकी पूजा करते हैं, जबकि नारद जी एक प्रकार से सबके गुरु है, एक प्रकार से सबके गुरु है। सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। शास्त्र में कहा गया जो व्यक्ति ब्राह्मणों का निरादर करता है उसकी आयु कम हो जाती है। जो व्यक्ति जल का निरादर करता है उसके उसकी आयु कम हो जाती है, इसलिए हम सबकी आयु कम होती चली जा रही है क्योंकि हम जल का निरादर करते हैं। सबसे पहले निरादर होता है बाथरूम में, हमको जल में शौच करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो उससे बदबू आएगी। आजकल जो विदेशी स्टाइल का टॉयलेट है उसमें जल रहता है ना, तो जल 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 ब्रह्म है। लोमस का उपाख्यान पढ़िएगा, लोमस ऋषि का एक व्रत था, वो जल को ब्रह्म के रूप में पूजा करते थे और कहीं भी जाते थे जल की वंदना किए बिना वो पूजा नहीं करते थे, ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करते थे। इससे उनकी आयु इतनी बढ़ गई, आप सब जानते हो, एक प्रलय में एक रुआ निकल देते हैं। और उनके उपास्य वस्तु हैं जल, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये सब हिंदू वैदिक चेतना है। मानवीय चेतना को कहां तक ऊपर उठाया जा सकता है ये शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो श्री नारद जी एक प्रकार से सबके पूज्य, फिर भी युधिष्ठिर महाराज जी को पूजा करते हैं, केवल पूजा नहीं उनकी स्तुति करते हैं। यूयम लोके बत भूरी भागा लोकम पुनानामुनयो भिजंती ये साम गृहे ये साम गृहाना वर्षती साक्षात गूढ़म पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम। हे राजन, आपके घर पर जहां मुनि ऋषि राजर्षि महर्षि सदैव आते जाते हैं, क्यों आते जाते हैं? आपके घर पर गूढ़म परब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य के रूप में वो परब्रह्म साक्षात विराजमान करते हैं, इसीलिए ऋषि मुनि सन्यासी जति आपके घर पर निरविच्छिन्न रूप से आते जाते रहते हैं। राजन पतिर गुरु अलतम अलम भवताम जदो नाम दैवं प्रिय कुलपति क्वच किं करो वा। नारद जी का एक कथन है, हे राजन, वो आपके कभी कुलपति बनते हैं, कभी प्रिय बनते हैं, कभी दैव बनते हैं, कभी इष्ट बनते हैं, कभी कभी तो आपके किंकर बन जाते हैं। ऐसी महिमा आप लोग रखते हो, इस प्रकार के भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और सामूहिक रूप से प्रशंसा करने के बाद नारद जी एक एक करके प्रशंसा करते हैं, एक एक करके करते हैं, युधिष्ठिर की करते हैं, भीम की करते हैं, कुंती की करते हैं, श्री अर्जुन की करते हैं, नकुल सहदेव की करते हैं, रामचरित पर विचार करते हैं, कहते हैं क्या प्रेम है रामचरित में। बोले श्री रामायण में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, कहीं भी देखो मर्यादा, कहीं भी देखो मर्यादा, मर्यादा जहां पर है वहां क्या प्रेम है। शास्त्रकारों ने कहा मर्यादा के अंतर्गत प्रेम नहीं हुआ करता, जहां पर मर्यादा पर पानी फेरा जाता है, मर्यादा को एक साइड कर दिया जाता है, वहां पर प्रेम संभव है। एक संत ने कहा मानो प्रेम ने मर्यादा को माना, उसने सागर में डूब करके आत्महत्या कर लिया है, वो प्रेम पदवाच्य नहीं है, प्रेम में मर्यादा नहीं होता है, वो मर्यादा को पार करके प्रेम चलता है, लिखा हुआ है, नारद जी लिखते हैं। निष्पक्ष रूप से यदि रामचरित पर विचार किया जाए तो वहां मर्यादा लोक वेद धर्म की प्रधानता है, केवल लोक वेद है, मर्यादा है। श्री भगवान राम ने भी एक सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य परायण नीति न्याय निपुण प्रजाजन प्रिय सम्राट महाराजों के रूप में ही अपना परिचय देते हैं, वहां प्रेम की प्रधानता नहीं है, जिससे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा गया है, प्रेम पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। शास्त्र प्रमाण लोगे आप, भूरी भूरी शास्त्र प्रमाण है, गोपियों की प्रेम में कोई मर्यादा नहीं, मर्यादा को पार करके गोपियां प्रेम करती है। चैतन्य चरितामृत से प्रमाण ले लीजिए, मर्यादा दर्शन लोभे ते करी मर्यादा लंघन भोगमंडपे जाया करे प्रभु दर्शन, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु का एक नियम था, वो सदैव गरुड़ के पीछे रह करके वो जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे, परंतु वो जो 15 दिन तक वो होता है ना, वो क्या होता है, अनवसर, उस अनवसर के समय महाप्रभु अलग-अलग चले गए थे। और जिस दिन नेत्रोत्सव होता है और श्री साक्षात पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं, उस दिन महाप्रभु जी का धैर्य और उनकी मर्यादा टूट जाती है। वो कहते हैं दर्शन लोभे ते करी मर्यादा लंघन, मर्यादा का उन्होंने अतिक्रमण किया, हमको जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो चले गए। उसका कारण क्या था, दर्शन का लोभ, दर्शन का लोभ था, कोई मर्यादा नहीं। एवं ब्रुवाणा विरहतोरा भृजम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जारुदोषु स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। अक्रूर जब लिए जा रहे थे कृष्ण बलराम को, बहुत सारे गोप थे, बूढ़े बूढ़े गोप थे, गोपियां कहती है ये बूढ़ों की बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है, ये क्यों कृष्ण बलराम को बस से बाहर निकाल देते हैं, क्या कृष्ण बलराम के प्रति इनके चित्त में जरा सा भी आकर्षण नहीं है। उन्होंने लज्जा का परित्याग कर दिया। सुखदेव जी लिखते हैं विसृज्य लज्जाम, लज्जा छोड़ दी, रुरुदु रोने लगी सुस्वरम, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव, फूट फूट करके रोने लगी गोपियां। उनके रोदन सुनकर के ब्रज कानन भी रोने लगा, पक्षी मृग शावक भी रोने लगे। विसृज्य लज्जा रुरुदु सुस्वरम, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव, कोई मर्यादा नहीं है। विवाहिता स्त्रियां थी, सबके लिए अपना पति पिता पुत्र बंधु मर्यादा सब थी। इसी को उद्धव जी कहते हैं दुस्त्यज्य आर्य पथम च हित्वा भेजू मुकुंद पदवीं श्रुति भेर्विमृग्याम। जिस पदवी को, जिस पुरुषोत्तम को वेद की ऋचाएं ढूंढती रहती है, बड़े बड़े सिद्ध संत तपस्या के बल पर जिनकी पदवी की खोज करते हैं, और उनको छचिया वरी छाच पे नाच नचाया, काना मैं तो को छाच दूंगी, मैं तो को थोड़ो सो छाच दूंगी, बस वो नाचता था। लज्जा मर्यादा ये प्रेम में नहीं होता है। तो नारद जी ये सब प्रशंसा करते हैं पांडवों के लिए, तुम लोग धन्य हो, वास्तव में उनसे प्रेम करते हो, जगदीश्वर को सारथी बना देना ये मर्यादा टूट जाती है। यहां पर मर्यादा काम नहीं करती। युधिष्ठिर महाराज जी को लोक पितामह ब्रह्मा जी के पिताजी श्री नारायण श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं, ज्येष्ठ भ्राता है, भ्राता श्री प्रणाम, श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। ये सब प्रेम है, अद्भुत विकट प्रेम की बात लिखी गई है। एक एक चीज नारद जी वर्णन करते चले जा रहे हैं। द्रौपदी को कहते हैं तू मेरी सखी है कृष्णा, मेरा नाम कृष्ण है तेरा नाम कृष्णा है, तू मेरी सखी है, जब तू पुकारेगी हम तब आ जाएंगे, आ भी गए थे। ये सब प्रेम के परिचायक है, ये सब प्रेम में अधिकार साबित हो जाता है, इसी का नाम है प्रेम। एक एक करके प्रशंसा करते चलते हैं, ये प्रशंसा सुन करके पांडव लोग का धीरज टूट जाता है, नहीं नहीं हम प्रशंसा के पात्र नहीं है, कहां श्री कृष्णचंद्र हैं, कहां उनकी भक्ति है, कहां हम पांडव है, हमारे में भक्ति नहीं है। तो नारद जी उनको कई दृष्टांत देते हैं, आप लोगों के द्वारा उन्होंने राजस्वीय यज्ञ आदि कराया, आपके सारथी बने, मित्र बने, किंकर बने, सब बने, आप कैसे कह सकते हैं कि आप में भक्ति नहीं है? युधिष्ठिर उसका खंडन करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं आप कवि हैं, आप गंधर्व कला से अभिज्ञ हैं, इसलिए आपको बोलने की चातुरी मालूम है। आप होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी में परिवर्तित कर सकते हो। जो कवि होते हैं वो बहुत कुछ कह सकते हैं, कवि की कल्पना बहुत होती है, वो कल्पना की सीमा कोई नहीं पा सकता। इसीलिए आप गंधर्व शिरोमणि हो, आप बोलने में बहुत चतुर हो, आप व्याख्यान देने वालों में शिरोमणि है। श्री युधिष्ठिर महाराज जी के उद्गार है। युधिष्ठिर कहते हैं, हे नारद जी, आपका जो कहना है हमारे द्वारा उन्होंने राजस्व यज्ञ कराया, बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा जस बढ़ा, ठीक बात है, परंतु वो जो उनके जो यज्ञ कराने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य को दूसरा था। वो कहते हैं, राजस्व यज्ञ के बहाने से मैंने श्री कृष्ण की यह प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों तथा तो अभक्तों की निष्ठा दिखाइए। देखिए राजस्व यज्ञ के पीछे क्या रहस्य है। बोले राजस्व यज्ञ के पीछे रहस्य यह है कि हमने प्रभु से ये निवेदन किया था, यदि हमारे तरह भक्तों को दुख मिले, प्रभु आपका भजन कोई नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे देखो पांडव, उन लोगों ने भजन किया तो क्या हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया, ये वन में भटकते रहे, भोजन नहीं मिला, तरह तरह की विपत्तियां आ पड़ी, तो उनका भजन क्यों करें? प्रभु ऐसा कुछ काम करो जिससे आपका भजन लोग कर सके। इसीलिए हमारे द्वारा राजस्वीय यज्ञ करा करके उन्होंने हमारे पास अमाप धन संपदाएं हैं, इस चीज को उन्होंने संसार में दिखला दिया इसके माध्यम से, ताकि लोग उनका भजन कर सके। इसमें हमारे ऊपर क्या कृपा है? वास्तव में कृपा है, लेकिन ये सब टेढ़ी टेढ़ी बातें हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा इस बात को रसिक भक्त ही समझ सकते हैं, इस बात को रसिक भक्त ही समझ सकते हैं। वास्तव में पांडवों की ख्याति हुई, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु युधिष्ठिर उल्टा कह रहे हैं, और उन्होंने हमसे राजस्व यज्ञ करा करके हमसे दूर चले गए। अब गए तो गए, दर्शन देने हमारे लिए नहीं आते, बड़ा दुर्लभ हो गया। युधिष्ठिर ये कह करके अपना पल्ला झाड़ देते हैं, नहीं हम पर जरा सी कृपा नहीं है, क्या कृपा है ये? यहां तक युद्ध की बात है, हमसे युद्ध करवाया, युद्ध करने के पश्चात हमको क्या शांति मिली? अर्जुन जी पहले एक बात हम कह देना चाहते प्रसंग के दौरान, फिर प्रसंग भूल जाएंगे, याद नहीं हुआ। यद्यपि अर्जुन जी से युधिष्ठिर में अधिक गुण है, विनम्रता आदि है कि नहीं, ब्राह्मण्य गुण के रूप में युधिष्ठिर में बहुत अधिक गुण है, पर फिर भी गीता के लिए युधिष्ठिर को अधिकारी नहीं माना गया, क्या कारण है? ऐसा नहीं कि अर्जुन में जितने गुण थे और युधिष्ठिर में नहीं थे, बहुत बहुत अधिक गुण, ब्राह्मण्य गुण में, सत्य सरलता आदि में युधिष्ठिर बहुत श्रेष्ठ थे। परंतु भागवत यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, एक रहस्य बात आपको मिल जाएगी, क्या है? गीता में जिस युद्ध के लिए अर्जुन पहले भयभीत है, अर्जुन कहते हैं हाँ ठीक है हम लड़ेंगे, भीष्म अर्जुन पर, भीष्म द्रोणाचार्य पर हम बाण वर्षा करेंगे, उनको मार देंगे, परंतु ये कन्हैया कहिए, हे मित्र आप ये कहिए कि उनके खून से सना हुआ भोग से हमको क्या सुख मिलेगा? गुरुन हत्वा ही महानुभवान श्रेय भोक्तुम भक्षम अपीह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरुन हैव भुंजीय भोगा रुधिर प्रतिग्धान। एक खून से सना हुआ भोग से किसी को तृप्ति नहीं मिलती, हम नहीं भोगना चाहते। परंतु उस समय युधिष्ठिर महाराज जी के मन में यह भाव नहीं था, इसीलिए गीता का अधिकारी अर्जुन बने, उनके चित्त में दया पहले ही आ गई। परंतु भागवत जब आप अवलोकन करेंगे उसमें देखेंगे कि युद्ध के बाद जब पीड़ा हुई तब युधिष्ठिर के मन में यह भाव आता है, उनको असंतोष होता है, वो तड़पते हैं, ये बेकार हो गया, हमारा जीवन बेकार हो गया, हमने हमारे वजह से इतना जनसंहार हो गया, हमने बहुतों को मारा डाला, ये हमसे भारी गलती हो गई। उनका इतना अफसोस होता है तो श्री कृष्ण उनको भीष्म देव के पास लेके जाते हैं, दान धर्मान राज धर्मान अनेक समा अनेक विभाग के ज्ञान धर्म चर्चा होती है, ये अंतर है। तो अर्जुन के चित्त में दया बहुत थी, वो बहुत पहले से पीड़ित थे, ये भाव को एक आचार्य ने दिया है। अर्जुन को क्यों गीता का पात्र बनाया गया, दया है अर्जुन के मन में, और उस अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता पूरा संसार जानता है, कैसी मित्रता है, ऐसी मित्रता जैसे खीर और नीर है। वो मित्रता की प्रशंसा कहां तक कहें, साक्षात श्री कृष्ण अर्जुन की मित्रता चाहते हैं। एक बार जब खांडव वन दहन हुआ, सब जानते हैं, अग्निदेव ने कहा वर मांगो अर्जुन, अर्जुन ने कहा प्रभु यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं हमें अस्त्र शस्त्र दीजिए, क्योंकि आगे युद्ध होने वाला है, हमको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। तो अग्निदेव ने कहा कोई बात नहीं, आगे चल के भगवान शंकर के साथ तुम्हारा युद्ध होगा और युद्ध से वो प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हें पाशुपत आदि अस्त्र सब दे देंगे। कृष्ण से अग्निदेव ने कहा वर मांगो, कृष्ण वर मांगो। कृष्ण ने कहा हे अग्निदेव यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि अर्जुन के साथ मेरी मित्रता चंद्रकला की भांति दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त होती रहे, ऐसा वरदान मांगा श्री कृष्ण ने, महाभारत में लिखा हुआ है। मेरी मित्रता अर्जुन के साथ अटूट रहे। और वो अर्जुन कहते हैं वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु पिणा, उस हरि ने जो मेरा बंधु था उसने मुझे ठग दिया, वो तो चले गए, जब चले गए उस समय कह रहे हैं, अब कह रहे हैं गीता ज्ञान दे करके उन्होंने मुझे ठग दिया। क्या गीता ज्ञान दिया, अरे उनके भक्ति करके लोग पागल हो जाते हैं, हमको लड़वा दिया, ये क्या ज्ञान है। हमको तो तुच्छ वर्णाश्रम धर्म में ही लगा दिया, जिस वर्णाश्रम धर्म की भूरी भूरी चैतन्य महाप्रभु निंदा करते हैं, है कि नहीं, क्या वर्णाश्रम धर्म पालन करना है, कब तक करते रहोगे, 100 जन्म तक ठीक ठीक कर पाओगे तब क्या बनोगे, ब्रह्मा जी बन सकते हैं। 100 जन्म तक, 100 जन्म एक दो नहीं है, भारी कठिनाई है। ये कर्म विभाग को कहा गया है ये ततैया है, ततैया ये थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, ततैया जैसे काटते हैं ना, इनके इनका प्रतिफल इनकी प्रतिक्रियाएं होती रहती है, ये भारी कठिन व्यापार है, ये नहीं हो सकता। तो उस वर्णाश्रम कर्म में, उस युद्ध में मुझे लगा दिया, ये कोई बात है क्या, ये बिल्कुल भक्ति नहीं है। वास्तव में गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है ये अर्जुन को डाल करके उस कर्म में लगा दिए, वो गीता का एक एक अंग मात्र है। इसीलिए महाप्रभु जब रामानंद पटनायक के साथ चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा एहो बाह्य, गीता का जो सर्वोच्च ज्ञान है उसको कहा एहो बाह्य, बाह्य माने ये सब बाहरी बात है। रामानंद पटनायक के साथ चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं गोदावरी के तट पर, तो वहां पर शास्त्र की चर्चा होती है। किस शास्त्र की चर्चा, साध्य साधन का निर्णय, साध्य वस्तु क्या है, प्रभु कहे कह राय पढ़ श्लोक साध्य निर्णय। तो राय कहते हैं वर्णाश्रम धर्म विष्णु भक्ति है, वर्णाश्रम चारवतां पुरुषेण परह पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारण। महाप्रभु ने कहा क्या बात कर रहा है। अब अर्जुन देखिए, आज तक हम लोग गीता पढ़िए पर सनातन गोस्वामी पाद कैसे रहस्य को उद्घाटन करते हैं। महाप्रभु वहां कहते हैं क्या वर्णाश्रम की बात कहते हो, एहो बाह्य रिजेक्टेड, इसको छोड़ो पीछे हटाओ आगे कहो आज। और वही वर्णाश्रम में श्री कृष्ण लगाते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय
सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत्व युद्धाय युजस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। पाप का डर दिखा रहे हैं और उस भक्ति में पागल जो हो गई थी गोपियां वो कहते हैं पाप कैसा पाप है, पाप किसको कहते हैं, भले ही हम पर पाप पर्वत के समान चढ़ जाए पर हमारे चरण के धूल से अगर श्याम सुंदर का बुखार ठीक होता है तो तुम लेके चले जाओ, हमको 100 जन्म तक नरक भोगना पड़े, पाप पाप का डर तुम दिखा रहे हो हमें, इसी का नाम है भक्ति। ये भक्ति बड़ी गहरी बात है। वर्णाश्रम चार गौतम ये हो बाह्य। आगे चल के कहते हैं ठीक है और कुछ कहो। रामानंद पटनायक कहते हैं कर्मार्पण करो, यत करो सी यद स्नासे यद जो हो सी तदासे यद यद तपस्य से कौंते यद तत पुरुषो मदर्पणम कर्मार्पण करके। इसलिए ये शुद्ध भक्ति वही तो सब सवेरे की चर्चा थी। यत करो सी माने यत के अंदर सब आ गया कि नहीं, यत करो सी तुम जो भी पूजा पाठ होम त्याग जप तप जो भी करना चाहते हो तत्पुरुषम अदर्पणम इसी का नाम है कर्मार्पण। पर ये शुद्ध भक्ति नहीं। महाप्रभु ने कहा ये हो बाह्य आगे कहा। फिर रामानंद जी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच आज्ञायैव गुणान् दोषान् है ना मयाधिष्ठान स्वगान अपि धर्मान संतेज्य यह पुमान सच सत्तमः। मैंने कहा वेद धर्म, लेकिन जो प्रेमी होता है वेद धर्म की उपेक्षा करता है। प्रत्यक्ष धर्म में कह रहा हूं मेरी शरणागति है। महाप्रभु ने कहा सब कुछ छोड़ करके स्वधर्म त्याग यही साध्य भक्ति है। महाप्रभु ने कहा इहो बाह्य ये सब बाहरी बात है। अब देखो सब गीता का जो सर्वोच्च उपदेश है उसको महाप्रभु कहते हैं हो बाह्य। किस भाव में कहते हैं, भक्त भाव में कहते हैं, क्योंकि भक्त भाव में उस प्रभु का आस्वादन प्रभु से अधिक होता है। भक्त भाव में आस्वादन वो उस प्रभु से भक्त को अधिक होता है, इसीलिए भक्त भाव में कहते हैं यह बाह्य। ठीक है आगे बोलो। बोले ज्ञान मिश्रा भक्ति सर्वसाध्य सार ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समम सर्वेशु भूतेशु मद भक्ति लभते परम। महाप्रभु ने कहा एहो बाह्य कर्म नहीं कि ज्ञान भी नहीं है। तो रामानंद पटनायक ने कहा बहुत कुछ बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं। तो उनसे उन्होंने कहा ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवन्ते सन्मुखरितं भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगणं तनुवां मनुभिर्जे प्रायसो जित जित अपि तैस्त्री लोक्यां। हे प्रभु जिन्होंने ज्ञान की अभिलाषा छोड़ दी है और अपने स्थान पर रहते हुए आपके नाम गुणों का कीर्तन करता है वो ही भक्त श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने कहा एहो है। अब एक बात बनी, अच्छा कुछ आगे जानते हो क्या, राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार कृष्णे कृष्ण रस मति भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि एकम मूल्यम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। बहुत अच्छी बात है, आगे की कोई बात है क्या। रामानंद जी कहते हैं दास्य भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। आगे कोई है सख्य भक्ति, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी श्लोक को गाय करके सुखदेव गोस्वामी की समाधि लग गई थी। हाँ शास्त्रकारों ने लिखा है कि जन्मेजय आदि सब थे और परीक्षित जी कहा तो अभी थोड़ा कीर्तन करो सुखदेव गोस्वामी की समाधि को लेकर। इत्थम सताम
ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्य गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजर्हो कृतपुण्यपुञ्जाः कृतपुण्यपुञ्जाः। आहा, जिस प्रभु को ब्रह्म योगी ध्यान से दर्शन करते हैं, दास्य भक्त अपने प्रभु के रूप में दर्शन करते हैं, माया से विजड़ित माया से ग्रस्त व्यक्ति सामान्य मनुष्य का ज्ञान करते हैं, और उस परमेश्वर हरि के साथ ये बालक गोप ग्वाले खेलते हैं कूदते हैं, उन्हीं के साथ फुदकते हैं, कृतपुण्य पुंजा, ओहो इनके भाग्य को तो देखो कितने भाग्यशाली। महाप्रभु कहते हैं यह उत्तम। तो अर्जुन को वही ग्लानी हो रही है, आपने हमको कैसा उपदेश कर दिया, हमको ठग दिया युद्ध में लगा करके, युद्ध में लगाया तो हमारा चित्त हमारा हृदय हाहाकार कर रहा है, मेरे पितामह भीष्म नहीं रहे, मेरे आचार्य द्रोणाचार्य नहीं रहे, सब चले गए, किसको लेकर के हम दुख सुख भोगेंगे। चलो हुआ तो हुआ, तब तुम भी तो चले गए, तुम रहते हमने तुम्हारे लिए लड़ाई करी, तुम भी तो नहीं रहे ना, इसलिए हे नारद जी हम बिल्कुल कृपा के पात्र नहीं है। भीम ने कहा तुम नारद जी बंद करो उनकी बातें, पता नहीं तुम्हें वो छलिया है, कपटी है, बहुत कुछ बातें बनाता है, वो बहुत बहाना बनाने वाला है, बिल्कुल कृपा नहीं है, वहां जाकर के गाओ। वैसे भीम के साथ भारी मित्रता है कृष्ण की, दोनों में अच्छा जमता है, भीम जी भी पूजा करते हैं वैसे महाभारत में वर्णन है। नकुल सहदेव के पास चले गए, नकुल ने कहा, नकुल सहदेव श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी हैं, उन्होंने कहा हाँ उनकी कृपा हम पर है, उन्होंने हमारे द्वारा राजस्व यज्ञ कराया, हमको युद्ध में जिताया, सब कुछ किया, परंतु दर्शन तो नहीं दे रहे हैं ना, हमको छोड़ करके चले गए। सब दर्शन से लाल, दर्शन के लिए लालय थे, दर्शन चाहिए, केवल हमें ही इतने अहत भाग्य है, हमको कुछ दर्शन वर्शन कुछ नहीं चाहिए, हमको पकौड़े चाहिए बस, उसी के दर्शन सवेरे सवेरे हो जाए, बाकी कन्हैया तुम जहां पे बैठे हो अल्टर पे वहीं बैठे रहना, ये भाव है। वास्तव में दुख देने वाली चीज है। कुंती जी के पास नारद जी जाते हैं, जो कुंती श्री कृष्ण की बुआ लगती थी, वो कुंती कहती है मैंने तो ये सोची थी कि मेरा भाग्य देवकी से बहुत ज्यादा अच्छा है, देवकी का भाग्य तो फूटा है, मेरी ये मान्यता है कि मुझ पर कृष्ण की बहुत अधिक कृपा है, उन्होंने आपके अपने मां के पुत्र को नहीं बचाया, सब मर गए, मरवा दिया है ना, देवकी के पुत्र तो बच्चे नहीं, बाद में ले गए वो अलग बात है, लेकिन मारा तो कंस ने, लेकिन मेरे पुत्रों पर कितनी विपत्तियां आई, भीम को विशल लड्डू दिया गया, लाक्षा गृह में उनको जलाया गया, साक्षात युद्ध में भीष्म द्रोण कर्ण ये सब महामहारथी है, उनके बाण से उनके कोप से मेरे पुत्र कभी भी नहीं बच सकते थे, उनको बचा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन दुर्भाग्य है अभी हमको छोड़ करके चला गया। क्या बताइए, कोई भी प्रेमी है अपने प्रेमास्पद को छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता, जो जिससे प्रेम करता है वो उसके पास रहता है, उसके मन में रहता है, उसके भाव में रहता है, सदैव उसके इर्द गिर्द में वो घूमता है, जागृत में स्वप्न में सब सब समय वो उनको देखता है, उनका प्रेमास्पद है। वेद मंत्र भी यही कहता है, वेद मंत्र इसीलिए सबको स्वार्थी बना बताता है, केवल एक परमात्मा को एक श्रीहरि श्री कृष्ण को छोड़ करके बताता है सब स्वार्थी है। नबा अरे पति ही पत्युः कामाय प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय प्रियो भवति न बा अरे जाया जाया यहा कामाय प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय प्रिया भवति। ऐसे ऐसी बात वेद कहता है। न बा अरे पुत्राः पुत्राणां कामाय प्रियो भवन्ति आत्मनस्तु कामाय प्रियः भवन्ति न वा अरे सर्वे सर्वासां कामाय प्रिय भवन्ति आत्मनस्तु कामाय प्रियो भवन्ति। ये तो थोड़े ये के लंबा मंत्र है, बहुत लंबा मंत्र है, इसमें 10-20 पद है। मोटा मोटी कहते हैं देखो, पत्नी के लिए पति उसको पति के लिए प्रिय नहीं लग रहा है, पत्नी के लिए पति वो पति के लिए प्रिय नहीं लग रहा है, वो अपने लिए प्रिय लग रहा है। पति के लिए पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं लग रहा है, लग रही है वो अपने लिए प्रिय लग रही है, क्योंकि उससे हमारा स्वार्थ पूर्ति होता है। पिता माता के लिए कहा गया पुत्र जो है पुत्रों के लिए प्रिय नहीं लग रहे हैं, ये अपने लिए प्रिय लग रहे हैं। देवता हमको देवताओं के लिए प्रिय नहीं लग रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए प्रिय लग रहे हैं। और इस संसार में जितने भी सर्व वस्तुएं हैं वो हमारे उनके लिए हमें प्रिय नहीं लगते, वो अपना स्वार्थ के लिए वो वस्तु प्रिय लगती है। परंतु एक ही श्री कृष्ण है, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, हाँ ये लिखा हुआ है, वो बिन कुछ भी इच्छा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण को पूछे, मुसलमान लोग उनकी पूजा नहीं करते फिर भी पानी उनको देता है, अग्नि के बिना काम नहीं चलता, ये सब भाव है। ये अर्जुन कहते हैं यदि कुंती कहती है यदि उनका प्रेम हमारे प्रति होता तो हमको छोड़कर के क्यों जाता, वो चला गया, हम उनके प्रिय नहीं है, उनके प्रिय वही द्वारका में रहने वाले है, हमसे वो प्रेम नहीं करता। द्रौपदी कहती है उन्हीं के लिए मेरे 5-5 बेटे चले गए, जिनके बड़े लड़के का नाम था प्रतिबिंध्य, मेरे पिताजी चले गए द्रुपद, मेरे भाई धृष्टद्युम्न चले गए, हाँ एक बार उन्होंने मेरी लाज बचाई थी, लेकिन युद्ध के उपरांत तो एक बार उन्होंने मुझे सांत्वना नहीं दी, एक बार नहीं कहा कृष्णा क्यों रो रही है, बस चले ही गए चले ही गए। हम कैसे माने नारद जी कि हम पर उनकी कृपा है, इसी से सिद्ध होता है कि हम पर उनकी कृपा नहीं है। उनकी तो कृपा पात्र उस द्वारका के रहने वाले यादव गण है, जाकर के देखो नित्य सभा में विराजते हैं, कृष्ण के साथ खाते हैं पीते हैं सोते हैं बैठते हैं जगते हैं, इसलिए वे उनके कृपा के पात्र हैं, हम पर कृपा नहीं। नहीं तो प्रेमी कभी अपने प्रेमास्पद को नहीं छोड़ता, चाहे मन में भी चिंतन करता है वो उनके पास ही रहता है। जल में उगे कमोदिनी चंदा उदे आकाश, जो जाहु के मन में बसे वो वाहु के पास। बोले चांदनी चंद्रमा भले ही बहुत दूर गगन में रहता है चंद्रमा और नीचे धरातल पर जल में कमोदिनी रहती है, पर दोनों में घनिष्ठ संबंध है, चंद्रमा को देखते ही कमोदिनी खिल जाती है प्रस्फुटित होती है, ये दोनों का भाव है। भले ही दूरी बहुत है परंतु संबंध बहुत नजदीक है, एक दूसरे को मन में धारण किए हुए रहते हैं, विचित्र भाव है ये। एक एक भाव को बखान करके चलते हैं आगे। हुए पांडव कहते नहीं, वो भले कुछ करे लेकिन उनके लिए हम बिल्कुल प्रिय नहीं है, आप चले जाओ हे नारद जी उन यादवों के पास चले जाओ, वही उनके कृपा के पात्र है, जाकर के देखो। तो श्री नारद जी परीक्षित महाराज कहते हैं हे मां, नारद जी उनसे विदा लेकर के द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किए। अब द्वारकापुरी जाकर के देखते हैं बहुत बढ़िया सभा लगी थी, सुधर्मा सभा, यथाजोग्य अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे यादवगण, वे अपनी अपनी सुंदरता से ही विभूषित होकर पारिजात पुष्पों की माला पहने हुए थे, वहां दिव्य से दिव्य संगीत नृत्य आदि के उत्सव हो रहे थे, उनकी बंदीजन विचित्र विचित्र प्रकार से स्तुति कर रहे थे, वे परस्पर हास्यरस भी कर रहे थे और सबको नवजौवन प्राप्त था, ये एक विशेष बात है, सब नवजौवन थे, वहां कोई बूढ़ा नहीं होता था। बोले जो उग्रसेन वगैरह, उग्रसेन और उसकी पत्नी पद्मावती, वो भी एक प्रकार से जवान हो गए, ऐसा भाव था द्वारका में। वास्तव में श्री कृष्ण की भक्ति करने से प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो हमको 70 साल की आयु हो गई फिर भी हमारा मन तंदुरुस्त है, ये भाव है। भक्ति करने से व्यक्ति में सामर्थ्य आ जाती है, भक्ति निःशक्तिक नहीं है, भक्ति में सामर्थ्य रहती है, ये भक्ति की विशेषता है। तो श्री नारद जी सबको देखते हैं, परंतु नारद जी जाकर के जब यादवों का यशगान करते हैं, नारद जी तो यहां तक कहते हैं, हे पृथ्वी तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो गई है, ये यादवों के द्वारा ये यादवों के प्रकट होने से तू धन्याति धन्या हो गई है, अहो तेरा भाग्य बहुत अधिक है, तुम्हारे ऊपर ये यादव लोग यहां पे क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे जब प्रशंसा कर रहे थे तो उसी समय वो यादव जी कहने लगे, नहीं नहीं नारद जी आप ये सच नहीं कह रहे हैं, हम काहे को श्री कृष्ण के कृपा के पात्र हैं, हाँ आपका कहना है कि उनके लिए हमको ये राज परिपाटी सब प्राप्त है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि श्री कृष्ण जो कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, ये कहा गया है योगेश्वर है, तो योग शक्ति के प्रभाव से सुधर्मा सभा पारिजात पुष्प आदि आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उनके प्रिय पत्र नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले हम उनके प्रिय पत्र होते वो हमको किसी विशेष विशेष काम पर भेजते, परंतु वो नहीं भेजते, उनके विशेष पात्र श्री उद्धव जी है, वो उद्धव जी को कहीं कहीं भेजते हैं। वो दृष्टांत देते हैं, एक बार श्री बलराम जी को और उद्धव जी को भेजे थे उन्होंने, कहां पर? हस्तिनापुर। जब शाम्ब के साथ लक्ष्मणा का विवाह हो गया था, आप लोग सब जानते हो, वो लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी थी और शाम्ब जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, हाँ दोनों का विवाह होने का था, तो वैसे कौरव जो थे ना वो बड़े घमंडी हो गए थे, धन के मत वाले थे, धन प्राप्त करने से सबको घमंड होता है, तो ये उस युद्ध में भी बड़े आश्चर्य की बात है, पांडवों ने भी भाग लिया था इनके यादवों के विरुद्ध में, उन्होंने कहा ये सब छोटी जात के हैं, ये हमारे साथ टक्कर देते हैं, अब देख लेते हैं एक बार, ऐसी बात हो गई, हम तो क्षत्रिय है, ये काहे को क्षत्रिय आ गए, हम कुरुवंशी है, ऐसी ऐसी स्पर्धा हो गई। तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा था और बलराम जी को भेजा था, तो उद्धव जी को बलराम जी जाकर के भेजे कि जाकर के देखभाल करके आ जाओ क्या हाल है, तो उद्धव जाकर कहे अग्रज पधारे हैं, कृष्णाग्रज बलराम पधारे हैं, तो वो बड़ी सभा लगी और बड़ा स्वागत हुआ। बलराम ने कहा स्वागत हुआ बाद में करना, जल्दी जल्दी वरवधु को तैयार करो, वरवधु विवाह जल्दी कराओ, ये विवाह नहीं हो सकता, ये कैसी बात है, चप्पल को कोई माथे पर उठा सकता है क्या? माने ये कुरुवंशी कह रहे हैं ये यादव वंशी हमारे जूते के समान है, उनको हम कैसे सर पर रखेंगे, हमारे साथ तुम्हारा संबंध नहीं हो सकता, अच्छा ये बात है। तो बलराम ने कहा सांड को या तो घास दिखा करके या तो डंडा मार करके शासन किया जाता है, ये सब सांड की तरह उद्दंड हो गए हैं, अब इनको शासन की आवश्यकता है। बलराम जी अपने दिव्य हल को बुलाया, वो हल जब उनके हाथ पर शोभायमान हुआ, प्रभु ने एक आंख वो हल को फैला करके खींचा, इसी समय निष्कौरवीम पृथ्वीम करिष्यामी, श्री बलराम जी ने शपथ लिया, इसी समय मैं कौरव से रहित इस धरती को कर दूंगा। पूरे हस्तिनापुर डबाडोल होने लगी, भीष्म ने कहा जल्दी जाओ बलराम जी से माफी मांगो, क्षमा की याचना करो, यदि तुम हस्तिनापुर में रहना चाहते हो तो इसी समय वो गंगा में डुबा देगा। वास्तव में जो मूर्ख होते हैं ना, उनको आप समझा करके नहीं समझा सकते, उपदेश से वो नहीं समझेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा उपदेश ही मूर्खाणाम प्रकोपाय, मूर्ख लोगों को उपदेश करने से बल्कि वो कुपित हो जाएंगे, वो प्रसन्न नहीं होगा कि भाई ये हमें इतना उपदेश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो ऐसा कभी नहीं मानेंगे, वो ज्यादा गुस्सा में आ जाएंगे। तो इसी बात को बलराम जी ने देखा, उस समय कौरव लोग आकर के उनके समक्ष क्षमा की याचना करते हैं, इस प्रकार से बलराम शांत हो जाते हैं। टाइम कितना हुआ? हाँ 9:20 जय श्री राधे। ठीक है, आधे में छोड़ देंगे क्या है। तो इस तरह से उद्धव जी की प्रशंसा करते हैं। उद्धव जी कहते हैं श्री नारद जी हम, हाँ उसी समय थोड़ा सा पहले वो उग्रसेन कहते हैं हाँ हाँ जल्दी जल्दी जाओ, आज विलंब हो गया है, और उद्धव जी से मिलो और श्री कृष्ण को जल्दी लेकर के आप सभा में पधारो। तो उग्रसेन कहने से श्री नारद जी चल जाते हैं, परंतु उद्धव जी की प्रशंसा सुनकर के नारद जी की स्थिति डगमगाने लगी। उद्धव, ओहो इतने प्रेमी भक्त, उद्धव का नाम सुनकर के नारद जी प्रेमाविष्ट होते हैं। इस पर लिखा हुआ है प्रेम क्या चीज है, नारद जी के रूम रूम में प्रस्फुटित हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते हैं, भागवत के दो श्लोक सार है, वो कहते हैं भागवतेर सार यही बोले बारे बारे। क्या बारे बारे बोले, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्तम उच्चैः हसत्यति रोदति रोति गायति उन्मादवत नर्त्यति लोकबाह्य। ये देखो लोकबाह्य मर्यादा को तोड़ फोड़ करके फेंक देता है भक्त, लज्जा का परिहार करता है, लज्जा उसके पास तक फटकती नहीं है। एवं व्रतः, व्रत ले लेता है नाम जप का, कभी हंसता है कभी चिल्लाता है कभी भागता है, बस मस्त रहता है। नारद जी की ये दशा हो गई, वो कभी तो रो रहे थे कभी चिल्ला रहे थे। उद्धव जी कहाँ है, उद्धव जी कहाँ है, नारद जी रोते रोते जाकर के उद्धव जी के पास पहुंचते हैं और उद्धव के पास पहुंच करके कहते हैं उद्धव जी कहाँ है, आपने देखा है उद्धव जी को, श्री कृष्ण के प्यारे सखा परम प्रिय सखा आपने उद्धव जी को देखा है क्या। और उद्धव जी को पूछ रहे हैं, तब उद्धव जी की भी धैर्य च्युति होती है। उद्धव जी नारद जी को लेकर के रो पड़ते हैं, दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझर करने झरने लगते हैं। नारद जी के चरणों को अपने गोद में ले लेते हैं, उद्धव जी श्री नारद जी के चरणों को अपने गोद में ले लेते हैं और सनई सनई धीरे धीरे कहते हैं हे नारद, हे ब्रह्म कुमार, आपने जो विचार किया है हम श्री कृष्ण के परम पृष्ठ है ऐसा नहीं है। हाँ ये अभिमान हमारा था, लेकिन जब हम ब्रज से लौट करके आए ये अभिमान मेरा चूर चूर हो गया। उद्धव जी ब्रज गए थे, वो अपने आप में एक मार्मिक प्रसंग है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। तमाह भगवान पृष्ठम भक्तमेकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्थी हरो हरि। वृष्णनाम, वृष्णनाम प्रवरो मंत्री उद्धव जी के लिए कहते हैं, सारे वृष्णि वंशों में ये श्रेष्ठ है, प्रवर श्रेष्ठ है, बृहस्पति के शिष्य है और श्री कृष्ण के दैत है, सखा है, एकनिष्ठ सखा है। क्वचित वो आत्म भक्त है, एकांतिन भक्त है। तो एक दिन श्री कृष्ण उनके हाथ पकड़ करके गृहित्वा पाणिना पाणि प्रपन्नार्थी हरोहरि, सबके सबके दुख को सबके विपत्तियों को नष्ट करने वाले वे पतित पावन, उनके ऊपर आज कौन सी विपत्ति पड़ी है, वो ध्रुव वो उद्धव के हाथ को पकड़ करके रो रहे हैं। गृहत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्ना आर्ति हरोहरि, सबके आर्त को खंडन करने वाले स्वयं आर्त है, क्या विपत्ति आ गई है उद्धव, तुमको जाना होगा। गच्छो उद्धव ब्रजम भद्र, आप ब्रज में जाओ। क्यों जाए, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दहिका मामेव दयितं पृष्ठं आत्मानं मनसागता। हे उद्धव तुम मेरी प्रियसियों के पास जाओ। कैसे है, ता मन मनस्का बस वो जीती तो है, मुझे चिंतन करके ही जीवित रहती है। मत प्राण, उनमें प्राण तो है परंतु मेरे नाम लेने के कारण ही उनमें प्राण है। मत प्राणा, मदर्थे त्यक्त दहिका, समस्त दहिक संबंधियों को उन्होंने भुला दिया है। ना पति के प्रति प्रेम है, ना बच्चों के प्रति स्नेह है, ना समाज के प्रति कोई श्रद्धा है, ना आर्य संस्कृति को पालन करने के लिए उनमें कोई निष्ठा है। मामेव दैतम पृष्ठम आत्मान मनसागता, ये लोक धर्मान त्यक्त्वा तान विभर्म्यहम्। मेरे लिए जिन्होंने लोक धर्म का परित्याग कर दिया है उनका हम पालन करेंगे, ये मेरा सत्य है। उद्धव आप जाओ। सुखदेव जी कहते हैं प्रपन्न आरती हरो हरि गृहित्वा पाणी ना पाणी, हाथ पकड़ करके कहते हैं उद्धव तुम ही जा सकती हो। इस उद्धव संदेश के महान रचनाकार श्री महानाम व्रत ब्रह्मचारी, उन्होंने इसका रहस्य उद्घाटन किया है। बोले लोग कहते हैं कि उद्धव के मन में ज्ञान का घमंड था, ये ठीक नहीं है। ये उद्धव जी जो कहते हैं ये तो अपनी विनम्रता है। श्री कृष्ण ने जाना कि ब्रज प्रेम को देने के लिए एकमात्र द्वारका का अधिकारी है उद्धव। नो उद्धव अणुअपि मन न्यूनो, उद्धव मेरे से जरा सा भी अणुमात्र का न्यून नहीं है, छोटा नहीं है। इसलिए प्रेम का एकमात्र अधिकारी उद्धव है। इसलिए मेरे जाने से पहले उद्धव को हम ब्रज के श्रेष्ठ महिमा श्रेष्ठ प्रेम उसको दे करके जाएंगे, उसको चखा देंगे कि प्रेम किससे कहते हैं। इसीलिए उद्धव को प्रभु ने भेजा, जाओ उद्धव, गच्छो उद्धव। उद्धव जाते हैं, वो तो एक विशेष प्रसंग है, एक एक प्रसंग मार्मिक है। उन्होंने ब्रज गोपियों को देखा। हाँ, उद्धव जब गए थे उस समय ब्रजवासी जो है वो विरह में तो थे पर उतने विरह में नहीं थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था मैं आऊंगा। बस इस आशा के साथ, इस मंत्र के साथ उनका जीवन निर्वाह हो रहा था, उनकी जीविका चल रही थी। तो उद्धव जी ने देखा सब सबका अंग पुष्ट था, सब अच्छी अच्छी साड़ियां अच्छे अच्छे वस्त्र धारण किए हुए थे, सब कुछ ठीक ठाक था। उद्गायति नाम अरविंद लोचनम, वो गीत गाना श्री कृष्ण के नाम लेती थी और दधिमंथन करती थी, सब काम ठीक ठीक से चलता था। परंतु जब बलराम जी आए तब स्थिति गंभीर थी। तो उद्धव जी उन वो ब्रज में जो गोपियां खास करके राधा रानी के जो भाव है वो भ्रमर गीत में 10 श्लोक में कहा गया है। एक एक का भाव हम कह देते हैं। उद्धव जी को वो राधा रानी जो 10 श्लोक में वो भत्सना करती है, प्रेम की कथा सुनाती है, उसी का नाम है भ्रमर गीत। उसका एक पंक्ति में राधा रानी कहती है अरे भौरा, हम जानते हैं तुम्हारा मित्र कैसा है। कैसा है? तो उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं मृगयोरिव कपिंद्रम विव्यधे लोध धर्मा। हे भौरा, तुम्हारे जो सखा है, तुम्हारे जो मित्र है वो बड़े कपटी है। कैसे कपटी है? बड़े छलिया है। मृगयोरिव कपिंद्रम विव्यधे लुप्त धर्मा, बाली ने उनका कौन सा दोष किया था? भाई भाई में कुछ लड़ाई हो गई, ये भाइयों के युद्ध में क्यों हाथ बटाया? चलो सामने खड़े होकर के न्याय कर देता, वो भी नहीं किया। विव्यधे लुप्त धर्मा, बहेलिया की तरह पेड़ के ओट में खड़े होकर उनको बाण मार दिया। क्या ठीक किया उसने? स्त्रियमपि अकृत वीरूपम स्त्री जीत कामयाना। अरे एक स्त्री के पीछे पागल होकर के दूसरी स्त्री का अपमान न कर दी बेचारी शूर्पणखा, उसकी क्या गलती थी। अरे उसने तो यही जाकर के कहा ना कि हम विवाह करना चाहती है। ये बताओ श्री राम के रूप शोभा देखकर के कौन स्त्री धीरज धारण कर सकती है? और वो चली गई, उसकी क्या गलती थी? चलो मना भी कर देता, ऐसा नहीं किया, उसके नाक कान को काट दिया। क्या यही तुम्हारे मित्र का चरित्र? यही उनकी विधि? तीसरी बार कहती है राधा रानी, देखो बलिमपि बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय भांक्षवत् यस्तदलम् असित सख्यै दुस्त्यजस्तत कथार्थः। वो राधा रानी कहती है, श्री जी कहती है, हे उद्धव, हे भोरा, तुम्हारे मित्र ने क्या नहीं किया। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय भांक्षवत्, कौवे की तरह जैसे कौवे बलि पर कुछ आहार पर टपक पड़ते हैं, उसी प्रकार ये श्री कृष्ण तुम्हारे सखा उस बलि ने जो सब कुछ समर्पण कर दिया उसको बांध दिया, बहुत कुछ प्रताड़ित किया, बहुत अपमानित किया, क्या यही उनका चरित्र है। तो मानो उद्धव जी कहेंगे, फिर उनके बारे में क्यों सोचती हो, छोड़ क्यों नहीं देती हो। तो श्री जी कहती है, जस तदलम असित सख्यी दुस्त्यज्य तत् कथार्थ। कथार्थ शब्द का अर्थ होता है, नहीं नहीं, हमसे छोड़ा नहीं जा रहा है, वो चाहे कुछ भी कर दे लेकिन वो हमसे छूटता नहीं है। उद्धव, कथा अर्थ माने, कथा का अर्थ है श्री कृष्ण, हम कितना भी चाहते हैं भूलने के लिए वो भूला नहीं जाता। इस प्रकार से उद्धव एक एक वाणी, एक एक भाव को देख लेते हैं, ब्रजवासियों का कितना आकर्षण है, सब पगली हो गई थी, प्रजल्प चित्रजल्प विजल्प अजल्प सब कर रही थी। ये 10 श्लोक जो है, चित्रजल्प इसे कहते हैं। अंतत उद्धव जी कहते हैं, आसाम अहो चरण रेणु जुसाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। हे प्रभु, हम पर इतनी सी कृपा करो, हमको वृंदावन में एक लता गुल्म औषधि के रूप में जन्म दे दो। क्यों? उद्धव जी कहते हैं, हो सकता है कभी ये ब्रज की ग्वालिनिया, ब्रज गोपियां जब जाएंगे, उनके चरण रज हम पर गिर जाएंगी, बस उसी से हम धन्य हो जाएंगे। ये भाव है, हे नारद, ये तो मेरा भाव था लेकिन इस समय हम नहीं मानते। वास्तव में कृपा के पात्र तो वो ब्रज की गोपियां हैं, ब्रजवासी नहीं। आप वहीं जाओ, वहीं जाने से आपको अनुभव हो जाएगा। उद्धव जी फिर, ये तो विस्तार चर्चा है, वो तो समय नहीं है। तो उद्धव जी बार बार बहुत कुछ कहते हैं, कहां तक कहें। उद्धव जी के पास फिर रोहिणी जी आ जाती है, रोहिणी भी ब्रज की महिमा बहुत बताती है। कहते हैं, कृष्ण जब से आया ना तो नंदराज और यशोदा इनका धीरज नहीं रहता है, रोते रोते इनका दिन बीत रहा है। बलराम जी भी कहते हैं, बलराम कहते हैं, कृष्ण कहां तक कहें, यदि यमुना में जल होता तो जल में कूद करके जीवन दे देते, यदि गिरिराज जी बहुत ऊंचे होते तो पहाड़ पर कूद करके वो खत्म कर देते जीवन, और यदि काली हृदय में विष होता वो उसका विषाक्त जल सेवन करके अपना प्राण नष्ट कर देते। परंतु दुर्भाग्य यही है, तुम्हारे विरह के कारण ना तो यमुना जी में जल है, ना गिरिराज जी की ऊंचाई है, ना काली हृदय में जहर है। कुछ नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण कहे, श्री कृष्ण तब तो भाव में आ गए, श्री कृष्ण कहे, आखिर आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। ये तो बहुत लंबा, मैंने बहुत छोड़ दिया, बहुत छोड़ दिया। श्री कृष्ण दवात और कलम मंगाते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं, चलो चिट्ठी भेज देते हैं, क्योंकि रुक्मणी और सत्यभामा जो पत्नियां थी उनके मन में विरह उत्पन्न हो गया, कहीं हमारे प्राण प्रियतम ब्रज ना चले जाएं, इतनी महिमा है, तो चले जाएंगे तो फिर उनके मुखचंद्र का दर्शन नहीं होगा, ये सोचकर कहते हैं। अंततः श्री कृष्ण ब्रजवासियों के विरह में इतने व्याकुलित हो जाते हैं, इतने व्याकुलित हो जाते हैं, बलराम जी को लेकर के बेहोश हो जाते हैं ब्रजवासी का स्मरण करके, वो ब्रज प्रेयसियां उनके स्मरण में उनको मूर्छा आ जाती है। तो बलराम को लेकर के वो श्री कृष्ण चंद्र वहीं पर मूर्छा चले जाते हैं, बस गए गए। बहुत सपने भपने की बात उसमें है, आप लोग पढ़ लेना, हम तो बहुत, और 5 मिनट है, 5 मिनट कितना टाइम हो गया, 9:30 हो गया। हाँ, बहुत कुछ है, बहुत। ये जो ये वास्तव में मैंने देखा, ये बृहत भागवतामृत में हमको अभिज्ञता हुई कि पहला दूसरा तीसरा चौथा इसको भले ही 2 दिन में कर दे, लेकिन चौथा को एक दिन, नहीं पांचवा को एक दिन, छठा एक दिन और सातवा एक दिन, तभी इसका रसास्वादन होगा। इसमें तो केवल ब्रज की भाव ही, ब्रज का भाव ही कहा गया है, बड़ा विस्तार भाव में कहा गया। तो श्री कृष्ण बलराम मूर्छा चले गए, रो रो पड़े, फुट फुट करके रोने लगे। अब दूसरे सातवें कड़ी पे हम प्रवेश करते हैं। उस समय जब मूर्छा चले गए, बहुत तीव्र मूर्छा हो गई, उस समय उनको होश देने दिलाने वाला, उनको मूर्छा से जगाने वाला कोई नहीं था। सब रो रहे थे, द्वारका के जो भी थे, उद्धव जी, बलराम जी, श्री कृष्ण तो मूर्छा है ही है, उद्धव जी रो रहे थे, वहां खड़ी जितनी रनिया हैं, अष्टपट महिषिया, रुक्मणी, मित्रविंदा, सत्यभामा, भद्रा, लक्ष्मणा, ये सब रो रही थी, और गरुड़ जी भी वहां थे, वो भी रो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा इनके मूर्छा के कारण द्वारका आज हतप्रभ है, तो क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी को एक उपाय सुझा, वो तो विधि है, उनके लिए उपाय ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने एक विधि की रचना करी। तो उन्होंने रैवत पर्वत और सागर, द्वारका का जो सागर, उसके बीच में एक वृंदावन की रचना करी। शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रिय में जब विरह होता है, उस विरह के अपनोदन के लिए पांच कारण चाहिए। ये पांच चीज क्या है? यदि विरह का कोई अपनोदन करना चाहता है, विरह से थोड़ा सा मुक्त होना चाहता है, उसके लिए प्रथम कारण है कि प्रिय सदृश वस्तु का दर्शन। कोई प्रिय वस्तु है, ठीक अपने प्रिय जैसा ही है, उसका अगर दर्शन करता है तो थोड़ा सा विरह अपनोदन होता है। दूसरा है प्रिय स्पृष्ट वस्तु का स्पर्श, जो अपने प्रियतम है उसने किसी वस्तु को छू दिया है, उसको प्राप्त करके थोड़ा सा विरह का अपनोदन होता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र के लिए अपना वस्त्र भेजा था, उससे भी थोड़ा विरह लाघव हो जाता है। तीसरी बात है कि स्वप्न दर्शन, यदि स्वप्न में भी दर्शन हो जाता है, थोड़ा सा विरह लाघव हो जाता है। चौथी बात है अभिनय, यदि अभिनय नाटक दिखाया जाता है तब विरह का अपनोदन होता है। और पांचवी बात है चित्रकर्म, चित्रकला के माध्यम से यदि फोटो आदि दिखाया जाता है तब भी थोड़ा विरह में शांति आती है। तो ब्रह्मा जी ने यही चित्रकारी की थी, सिर्फ वृंदावन की एक चित्रकला उन्होंने रैवत पर्वत के और इस सागर के तट के बीच में एक चित्रकारी कर दी। उस चित्रकारी के लिए उन्होंने ऐसा कहा, एक काम करो, गरुड़ जी वहां खड़े थे, वो बहुत रो रहे थे, उन्होंने कहा देखो गरुड़ जी, जब इस समय आप रोते रहोगे ना, काम नहीं बनेगा, रोना बंद करो और कृष्ण बलराम को लेके चलो वहां, और देखो बलराम जी जाएंगे और हो सकता है तो रोहिणी जाएगी, बाकी कोई नहीं जाएगा। पर ब्रह्मा जी के कथन से नारद जी तो बहुत संकुचित हो गए, वो लीला देखने चले। अब गरुड़ जी ने क्या किया, श्री कृष्ण बलराम को बहुत धीरे से अपने पीठ पर आरूढ़ करा करके वहां जहां पर वृंदावन की रचना हुई थी वहां चले गए। तो यहाँ जो ब्रज की माताएं हैं, रोहिणी देवी आदि, रोहिणी की तो अनुमति थी ही, पर बाकी जो रानियां थी उनका भी धीरज टूटा, वे भी कहे नहीं हम यहाँ नहीं रह सकती, वे भी अपने प्रियतम से मिलने के लिए वहां सब चल पड़ी वहां। परंतु ब्रह्मा जी का ये बहुत कठोर निर्देश था, कोई भी उनके सामने नहीं जाएगा, सब दूर में छिप करके खड़े होंगे, और ये जिम्मेदारी, ये दायित्व से ब्रह्मा जी ने उद्धव पर न्यस्त किया था, इसलिए उद्धव नियंत्रण कंट्रोल करके इनको सब रखे थे, कोई श्री कृष्ण के सामने नहीं जाते थे, क्योंकि ब्रजभाव का, ब्रजलीला का प्रदर्शन, ब्रह्मा जी को ये मालूम हो गया था कि प्रभु ये विधि केवल ब्रजभाव को दिखाने के लिए ही प्रकट कर रहे हैं, ये लीला रच रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी भी जान करके ये लीला कर दी थी। तो वहां जो वृंदावन है वहां जाकर के श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। जो ही श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं, बलदेव जी बड़े चतुर हैं, तो बलदेव जी ने क्या किया, बलदेव जी की मूर्छा पहले खुल गई, उन्होंने श्री कृष्ण जी के शरीर में दिव्य दिव्य ब्रज के वस्त्र सब पहना दिए, ऐसा लिखा हुआ है। बलराम जी ने क्या किया, उन्होंने जल्दी से अपने तथा श्री कृष्ण के मुखारविंद को पोछ लिया और धीरे से उनकी फेंट के वस्त्र में बंसी को संन्यस्त किया, बांसुरी खोल दिया, ब्रजवेश में बांसुरी डाल दी, हस्त कमलों में श्रृंग तथा बेत्र दे दिया, एक हाथ में बेंत और एक हाथ में श्रृंग और कंठ में कदंब के फूलों की माला पहना दी और मस्तक पर मोर मुकुट धारण कराकर नवीन गुंजाओं के कुंडल धीरे धीरे कानों में धारण करा दिया, संपूर्ण ब्रजवेश करा दिया और स्वयं ब्रजवेश में आ गए और धीरे धीरे कहे, कान्हा अरे जगदे क्यों नहीं, तुम्हारे मित्र ये ग्वाल बाल सब वन में जाने के लिए तैयार खड़े हैं, जाओ उठो जगो, कब तक सोते रहोगे, उठो 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 उठो। परंतु फिर भी श्री कृष्ण नहीं उठ रहे थे। फिर वो जब देखे, बलराम ने देखा कि श्री कृष्ण उठ नहीं रहे, उनको हिलाया, अरे क्यों नहीं उठते हो, जल्दी उठो, बहुत देर भई, ये सब चले जा रहे हैं, जाओ जल्दी उठ करके। तो बलराम जी के हिलाने से श्री कृष्ण शिव शिव कह करके जगते हैं, भोले बाबा का नाम लेते हैं, वास्तव में उनके प्राण प्यारे हैं ये। श्री कृष्ण शिव शिव कह करके जग जाते हैं और जब देखते हैं कि नंद महाराज और यशोदा उनके पास खड़ी थी वो प्रतिमा, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि वास्तव में मेरे माँ पिता मेरे सम्मुख खड़े हैं। तो श्री कृष्ण उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं, माँ तुम जानती हो मैंने कल रात को एक सपना देखा। क्या सपना देखा है? अरे मैंने ऐसा किया, मैं मथुरा गया, वहां पे कंस को मारा, जरासंध को भी मारा, द्वारका में बहुत बढ़िया नगरी बसाई, बहुत कुछ किया। माँ वो सपना बहुत बड़ा है, समय नहीं बन से जब हम वापिस आएंगे ना फिर कहेंगे। और भैया आप हमारे सपनों को विश्वास करते हो कि नहीं? चलो आपको हम कहेंगे पर वन में कहेंगे। यूं कह करके शर्म के मारे हो गए। वास्तव में ब्रज में एक भाव है, जब तक श्री कृष्ण वन में नहीं जाते यशोदा तब तक माखन लिए हुए खड़ी रहती थी। कन्हैया माखन लेकर के वन में जाएगा तब यशोदा अपने काम में जाती थी। इसीलिए तो परीक्षित ने कहा, नंदा किम अकरोत ब्रह्मन श्रेय एव महोदय यशोदा च महाभागा पपु यश्या स्तनम हरि। वो नंद कैसा भाग्यशाली है, उसने कौन सा बड़ा तप किया था और यशोदा ने भी कौन सा बड़ा तप किया था, क्या भाग्य किया था जिसका स्तंपन साक्षात हरि कर रहे हैं। हे ब्रह्मन, हे सुखदेव, आप कृपा करके बतलाइए, ऐसे इनके भाग्य है। वास्तव में कृष्ण के लिए कितने स्व सुख वासना के त्याग है, ये वासना का बिल्कुल त्याग है। यशोदा खड़ी रहती थी तो बलराम जी ने कहा, देखो जल्दी जल्दी चले जाओ, ये सब गैया लेकर के चले गए। और रोहिणी उस समय भी आ गई, बोले, कान्हा वैसे देखो तुम बहुत लंबे समय तक सो गए थे ना, इसलिए माँ थोड़ी दुखी है। देखो रोहिणी उनको भगाना चाहती है क्योंकि प्रतिमा है ये सब, वो कहती थी ये जल्दी तुम जल्दी चलो, ये तुम्हारे दुख से दुखी है कहीं हम। वो रोहिणी कहती है, देखो तुम उनके एकमात्र पुत्र हो ना, इसलिए तुम लंबे समय तक सो गए, इसलिए उनके चित्त में तरह तरह की शंकाएं आ गई, तुम देर मत करो, तुम चले जाओ और हम तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया भोजन कलेवा बना करके भेज देंगे, जाओ। बलराम जी चले जाते हैं और गोप सखा तो आगे हैं, वो सब मूर्तियां बनी है। बलराम पहले क्यों चले जाते हैं, इसमें कहा गया बलराम इसलिए चले जाते हैं ताकि कृष्ण जब गौ चराने के लिए जाया करते थे वो ब्रज की जो प्रेयसियां हैं उनको निहारती थी, ताकि श्री कृष्ण निसंकोच उनसे वार्तालाप कर सके, इसीलिए बलराम जी पहले चले जाते थे। और वही घटना है। तो ठाकुर जी चलते हैं, आगे चल के देखते हैं वृषभान दुलारी श्री राधा जी खड़ी है मान मुद्रा में। प्रभु जाकर के जय जय किशोरी जी, कैसी हो, क्या आज बहुत अधिक मान हो गया क्या, एकांत में हम हैं आप भी हैं, क्या आप हमसे बात नहीं करोगे। श्री जी, अच्छा आपने जान लिया शायद मैंने रात को एक सपना देखा था। देखिए क्या मन का भाव बता रहे हैं, श्री कन्हैया के मन में जो बीत रहा है श्री जी के मन में वही बीत रहा है। कन्हैया कह रहे हैं लगता है कि आपने हमारे सपने के तथ्य को जान लिया है। हाँ आपने जान लिया कि मैंने द्वारका जाकर के 108 रानियों के साथ विवाह कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं, विवाह कर लिया, बच्चे बच्चे है गए, अब हम वहां नहीं जाएंगे, अब हम आपके साथ ही रहेंगे, अब हमको क्षमा कर दो। फिर भी राधा रानी खड़ी थी क्योंकि श्री कृष्ण को अनुभव है, कभी कभी ऐसे मान करती थी, वो चित्र लेखा सी खड़ी रहती थी, कुछ नहीं बोला करती थी। जब मान हो जाता है ना तो वो नायिका बिल्कुल बोलती नहीं, उज्जवल नीलमणि में इसका सब वर्णन है। मान का अर्थ होता है मिलन की पूरी संभावना होते हुए भी मिलन नहीं होता है, इसी का नाम है मान, पूरी संभावना है। तो प्रभु कहते हैं एकांत में भी तभी आप हमसे बात नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मान बहुत अधिक हो गया। तो श्री कृष्ण ने फूल को चुना, चुन करके श्री जी के ऊपर डाला और इधर उधर देखा, देखा कि कोई नहीं है, तो चुपचाप श्री जी के कपोल पर चुंबन दिया। बस उनका आलिंगन करके चोरों की भांति आलिंगन चुंबन दे करके जब बाहर ही निकलते थे तो दूर पे रानियां खड़ी थी, उनमें से एक कंस की जो माँ है पद्मावती और सत्यभामा, ये दोनों प्रेम से काम से पगली हो गई। ऐसे ऐसे अद्भुत चीज लिखी हुई है। वो जो पद्मावती वृद्धा थी ना, वो कामुका हो गई, वो पगली हो गई, वो श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी। अब श्री कृष्ण की नानी लगती है ना, नानी लगती है। अब वो श्री कृष्ण की रूप शोभा कंदर्प की इतनी शोभा थी, वो पगली हो गई। तो टीका में लिखा हुआ है पद्मावती यद्यपि वृद्धा थी और उनको काम सताने लगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, गोपियां इसका प्रमाण है। कात्र्यंगते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहिताय चरिता न चलित त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपं यद गोद्विज द्रुम मृगः पुलकानि बिभ्रत। गोपियां कहती है कास्त्र्यंगते कल्पदायत मूर्छितेन, हे अंग हे प्रिय, जब आपके अधरों पर वासुरी की तान छूटती है, इन तीन लोगों में कौन सी ऐसी स्त्रियां है जो अपने धैर्य को बनाने में समर्थ होगी? अध समर्थ नहीं होगी। आपकी रूप शोभा विक्षाल कावृत मुखम तबकुंडल श्री, आपके सुंदर मुस्कान, आपके मंद तिरछ चितवन, विशाल वक्षस्थल, सर्पाकृति भुजाएं, इनको देखकर के कौन स्त्री आर्य पथ में रहेगी? नहीं रह सकती। आर्य पथम च हित्वा, वो मर्यादा को तोड़ देगी। जिस प्रकार नदी में बाढ़ आने से दोनों तट उत्प्लावित होते हैं, उसी प्रकार जब किसी प्रेमी के अंदर वो प्रेम की बाढ़ छूटती है तो लोक मर्यादा रूपी किनारा को अतिक्रम करके चलती है वो बाढ़। इसलिए पद्मावती वृद्धा हो गई थी, वो कामासक्त हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और सत्यभामा तो प्रेषित थी, ये दोनों आलिंगन करने के लिए दौड़ी, परंतु उद्धव बड़े विद्वान है। और कालिंदी जो है, कालिंदी को भी थोड़ा थोड़ा ब्रज का भाव पता है, क्योंकि ब्रज की रहने वाली है। श्री कृष्ण ने एक बढ़िया काम किया था, भारत के जितने इलाके हैं सब इलाकों से लड़कियों को चुन करके शादी कर ली थी। हाँ, गुजरात से कर ली थी, महाराष्ट्र से कर लिया था, कश्मीर से कर लिया, जितने जितने जिस जिस इलाके में जो भी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी सबसे विवाह कर लिया। और भौमासुर तो दुष्ट था ही है, उसने जो 16,000 कन्याओं को एकत्रित किया था वो सब दूसरे दूसरे प्रांत से संग्रह किया था, और श्री कृष्ण ने सबको ब्याह कर लिया। और आप लोग तो सभी जानते हो विदर्भ की रहने वाली रुक्मणी है, महाराष्ट्र की है कि नहीं? और सत्यभामा कहाँ की है? गुजरात की है। गुजरात की नहीं है तो गुजरात की है, द्वारका की रहने वाली। और कालिंदी हमारे ब्रज की, उधर यमुना है। और मित्रविंदा अवंती की, उज्जैन की थी। तो इस प्रकार हिसाब करोगे तो सब प्रांत की ये सब थे। तो ये मोहित हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब मोहित हो गई। और इनका तो क्या भाव, कहां तक कहेंगे? पर उसी समय उनको सब रोके, और रोक करके श्री कृष्ण और आगे चले, आगे चले। अरे ओ श्रीदामा सुबल मधुमंगल स्तोक कृष्ण, कहां जा रहे हो? चलो आज जमुना जी में विहार करेंगे। कहां पहुंच गए? वो सागर के किनारे पहुंच गए। सागर के किनारे पहुंच करके उनको भ्रम हुआ कि ये यमुना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको महसूस होने लगा यमुना जी में तो इतनी बड़ी बड़ी तरंगे नहीं होती है, इतनी बड़ी बड़ी तरंगे कहां से आ गई? और यमुना जी तो कभी आवाज नहीं करती है, इतनी आवाज, इतनी बड़ी बड़ी तरंगे, और यमुना के किनारे तो इतनी बड़ी अट्टालिकाएं नहीं हुआ करती, इतने बड़ा इतना बढ़िया सुंदर महल कहां से आ गया? द्वारका है सामने। तो ये सब देख करके जो थोड़ा सा संभ्रम हुआ, उसी समय बलराम जी आकर के पहुंच गए। बलराम जी ने उनको स्वरूप के बारे में जानकारी दी, कृष्ण आप द्वारकाधीश हो। तब श्री कृष्ण संकोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रजवेश को हमने धारण कर लिया, अपने को देखते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं कौन हूं? देखो यहां पर प्रश्न आया है, कृष्ण कह रहे हैं मैं कौन हूं? सनातन गोस्वामी ने पूछा मैं कौन हूं, परंतु वो मैं कौन हूं और श्री कृष्ण का मैं कौन हूं अंतर है। कृष्ण कह रहे हैं मैं नंदनंदन हूं या मैं वसुदेव का पुत्र हूं, मैं कौन हूं? यदि मैं वसुदेव का तनय होता तो मेरे में ये वेश कैसे आ गया? ये फेंट, ये बांसुरी, ये मोर पंख, ये कदम की माला, ये तो द्वारका में सदा अनुपलब्ध है। और इस वेश में द्वारका में रहना ये बहुत हास्यास्पद बात है। हमको तो राजवेश में रहना चाहिए था, और धूल में धूसरी तो होना ये उफ, भारी संकोच की बात है। तो बलराम जी उनको छेद करते हैं, उनका शंका निराकरण करते हैं, बोले आप प्रभु हो, आप जगदीश्वर हो, आप द्वारकाधीश हो। अच्छा, हम द्वारकाधीश है? श्री कृष्ण का भाव धीरे धीरे आ जाता है। प्रभु कहे तब भी भाव नहीं आ रहा था। बलराम जी ने कहा कृष्ण तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर मित्र इनको सालो आदि राजागण बहुत दुख दे रहे हैं। तब श्री कृष्ण अहंकार करते हैं, युधिष्ठिर पर कौन विपत्ति ला सकता है? जो पांडवों का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बस फिर श्री कृष्ण स्वरूप में आ जाते हैं, हम द्वारकाधीश हैं। देखिए अपना स्वरूप की स्फूर्ति होती है भक्तों की गाथा से। जब उन्होंने सुना कि मेरे भक्तों पर विपत्ति है, तब आ गए, बिल्कुल अपने रूप में आ गए, हम द्वारकाधीश हैं, हम मार गिराएंगे सालों। धीरे धीरे करके ऐसे ब्रजवासियों का जो भाव है वो उन्होंने तो बहुत बखान किया। एक एक करके उनको रुक्मिणी आदि सब कहते हैं। पद्मावती उस बीच में कह देती है, जो कंस की नानी, वो नानी जो है ना वो बीच बीच में थोड़ा सा वो पिंचिंग करती है। पीछे तो हमने छोड़ दिया लेकिन बहुत मजाक की बात है। पद्मावती कहते अरे क्यों इनको ब्रज भेजना चाहते हो? लगता है ये बलराम जी जब गया था, उद्धव जी जब गए थे ना, ये गोपो ग्वालों ने उनको बहुत दूध पिला दिया इसलिए लोग वशीभूत हो गए। अब इन्हें रानियों को फटकारती है, अरे तुम कैसी रानियां हैं, देखो वो ब्रज की जो अहेरी वालाएं हैं उनकी कितनी भक्ति है, उनके प्रेम में ये सदा मस्त रहता है। अरे ऐसी तपस्या करो ये तुमको भी तुम्हारे लिए रिझे। रुक्मिणी कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वास्तविक गोपियों का जो प्रेम है वो योग्य है, क्योंकि हम तो उनकी उपाधि युक्त पत्नियां है, बिल्कुल वेद मर्यादा के अनुसार उनके साथ हमारा विवाह हुआ है, पति पत्नी का संबंध है, पत्नी होने के नाते पति की सेवा करना यह आर्य संस्कृति है। परंतु वे गोपियां जो हैं आर्य संस्कृति को तोड़ करके उनकी सेवा के लिए उपस्थित होती थी, उनमें स्वसुख की वासना जरा सी नहीं है। जब रासलीला में बंसी का वादन होता है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा आजगमोर अन्योन्य अमलक्षितो दमा सजत्र कांत जबलोल कुंडलाह, ये कहा गया। कैसे आ गए? दुहं त्व अभिजयुकाश्चि दोहम हित्व समुत्सुकः पयोधिश्रित्य संयावम अनुद्वास्य पराजयुः। कोई दूध बिठाया था, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, कोई आंजनतः प्रमृजन्त्यन्यः, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, कोई मुख में लिपस्टिक लगा रही थी। अब वो उनका धरना नहीं रहा। वो क्या करती थी? अब ऊपर के पेटीकोट को ऊपर नीचे पहनती थी, नीचे का ऊपर पहनती थी, लिपस्टिक को आंख में लगाती थी, आंखों के काजल को ओठ में लगा देती थी। इस व्यतस्त वस्त्र भरणा ता कृष्णा तिकम जजुह, वो उनके आवरण उनके वस्त्र व्यतस्त हो गए थे। जहां जहां धारण करने योग्य है वो नहीं कर पाती थी, पगली होकर के भागी थी। ये उनकी महिमा है, ये शुद्धाति शुद्ध प्रेम है। कहां तक कहें, ये वास्तव में ब्रज की गोपियां जो है वो श्रेष्ठा है। तो उस समय सत्यभामा थोड़ा कोप में आ जाती। सत्यभामा कहती है, सत्यभामा को जानते हो वो थोड़ा मानवती है, वो मान करती है। रुक्मिणी ने बात करके सबको बता दिया, बोले नहीं नहीं ये ठीक है, वो हमारे प्रभु उनसे प्रेम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सत्यभामा को मान आ जाता है, सत्य भामा जब मान कर दिए, श्री कृष्ण कहते हैं अरे वो मूर्ख सत्रादित की पुत्री उसको बुलाओ। क्या मान करती है? क्या उसने समझ लिया कि पारिजात के समय जो मान करते हैं वो मान है? अरे ब्रज की जो प्रेयसियां यदि कहेंगे तुम 16108 पटरियानिया को छोड़कर के आ जाओ, हम इस समय तैयार है, चले जाएंगे। सत्य भामा को समझा बुझा करके उनके दासियों ने कह दिया, बोले अभी मान मत करो, अभी मान करना तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, वो तुम्हारे फर में नहीं जाएगा, तुम्हारे हित में नहीं। तो सत्य भामा डर के कारण साड़ी वगैरह वगैरह सब पहन करके उनके सम्मुख आ जाती है, फिर भी कहते हैं तुम मूर्ख सत्यादित्य की पुत्री हो, क्योंकि वो ससुर को गाली देते हैं, कहते हैं तेरा बाप मूर्ख था। क्यों मूर्ख कहा? बोले मणि तो दूसरे ने लिया था और उसने आरोप हम पर किया था, जैसे उसने मूर्खता की तुम भी वही मूर्खता करती हो, ठीक नहीं है। इस प्रकार ब्रज की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बोले सब कुछ हम छोड़ने को तैयार है। कहते हैं मैंने जो विवाह किया ना 16108 आप लोगों के साथ विवाह किया, अरे रुक्मणी ने हमको पत्र दे दिया, हम क्या करते? उसने कहा यही अंबुजाक्ष न लभय भवत प्रसादम जह्यामी व्रत कृच्छन जह्यामी असुन व्रत कृच्छनाम छत जन्म भी शात 100 जन्म तक हमको तप करना पड़े, यदि कृष्ण आप हमको नहीं मिलोगे हम ये गीदड़ जैसे शिशुपाल को नहीं भरे, हम तुमसे ब्याह। बस उसने चिट्ठी लेके भेज दिया, हम क्या करते, इसलिए हमको विवाह करने पड़ा। और ये 16000 जो ये भौमासुर के कन्याएं, इन्होंने कहा हमारी भारी बेइज्जती हुई है, ये राजा ने हमारा अपहरण किया और हमसे कौन विवाह करेगा, इसलिए कृष्ण हमसे विवाह करो नहीं तो हम आत्महत्या कर देंगे। और कालिंदी की बात तो आप सब जानते ही हो, और जहां तक तुम्हारी बात है तुम्हारे पिता ने तो तुमको हमको देकर के ऋण से मुक्त हुआ, इसीलिए जो मैंने विवाह किया ना हम मजबूरी से किया, सकते मामा वैसे हमारी जरा सी इच्छा नहीं थी, ये सब मजबूरी है, इसी समय हम छोड़ के चले जाएंगे। अब छोड़ के कहां जाएंगे? तो उस समय ये समय देख करके, ताकि ब्रजभा में बहुत विस्तार है, ब्रजभा में प्रभु ना आ जाए, उद्धव ने बाकी ईरानियों से कहा बिल्कुल अभी कोई मान भान मत करो, जाकर के प्रभु की स्तुति करो। सब वेशभूषा आभूषण पहन करके आ जाती है, स्तुति करती हैं, और माताओं से कहा जाकर के भोजन लेकर के आ जाओ। तो रोहिणी देव की जाती है भोजन लेकर के, ये रानियां जाती हैं भोजन लेकर के आ जाती हैं, और देवकी और रोहिणी ये भोजन का परिदर्शन करते हैं। तो प्रभु भोजन करने बैठते हैं, तब बलराम जी स्नान करके आ जाते हैं। बलराम कहते हैं नारद जी वहां खड़े हैं, तो प्रभु ने कहा नारद हर रोज आ जाते हैं, आज क्या हो गया उनका? तो उद्धव ने कहा उनको बड़ा संकोच हुआ है। किस बात का संकोच है? उन्होंने कहा कि नारद जी अगर प्रश्न नहीं करते तो आपको मूर्छा नहीं होता, तो नारद जी को इसीलिए संकोच हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा प्रिय वस्तु को स्मरण करा देना ये बहुत बड़ा उपकार है, इससे तो मैं नारद जी को, नारद जी के प्रति हम आभार है, नारद जी को हम आभार प्रकट करते हैं, इसमें संकोच लज्जा की क्या बात है? अरे हमारे प्राण प्रिय ब्रजवासियों का उन्होंने हमें स्मरण दिलाया, वही तो हमारे प्राण है, उन्हीं को तो स्मरण करके हम जीवित रहते हैं, वो हमारे प्राण है हम उनके प्राण है, इस सत्य को उन्होंने उद्घाटन किया। श्री नारद जी आ जाते हैं, बहुत बढ़िया से द्वारका में भोजन होता है। नारद जी कहते हैं जय द्वारकाधीश भगवान की जय, तो जय जयकार होता है। तो उस अवसर देख करके नारद जी कहते हैं हे प्रभु हमें 2 वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? तो नारद जी कहते हैं प्रभु हमें ऐसा वरदान दो श्री कृष्ण चंद्र कस्यापि तृप्तिरस्तु कदापि न भवतो अनुग्रहे भक्तौ प्रेमणी चानंद भाजने। प्रभु हमें 2 वरदान दो, एक वरदान तो है हे उदारेंद्र शिरोमणि हम आपसे ये वरदान मांगते हैं कभी आपके जितने भक्त हैं वो अपने भक्ति में कभी संतुष्ट ना होवे, और दूसरा वरदान दीजिए हम आपके नाम गुण लीलाओं को गान करके सदा उन्मत्त रहेंगे, ये वरदान दे। तो प्रभु ने कहा ये कौन सी वरदान, ये तो सब लोग जानते हैं, ये तो सबको प्राप्त है, ये तो सबको प्राप्त है, लिखा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं और कोई विशेष वर मांगो, हाँ
हे श्री कृष्ण, आप भजन के प्रेम रूपी सरोवर में हंस है। प्रथम बार ये वर मांगता हूँ कि गोकुल रूपी समुद्र से प्रकट हुए गोप वेश तथा लीलाओं को प्रकाशित करने वाले आपके मधुर से मधुर नामामृत को मैं उन्मत्त होकर निरंतर पान करता रहूं एवं समस्त लोगों को उनमें रमण करता हुआ इस जगत में भ्रमण करता रहूं। और दूसरा बार ये मांगता हूं, जो कोई मनुष्य विश्वास सहित आपकी ब्रज लीला का एक बार भी अपने मुख से वर्णन करे अथवा कान से सुने, हृदय में धारण करे अथवा अपने अंग द्वारा आपके क्रीड़ा भूमि का स्पर्श करे, वह आपके उन युगल चरणार बिंदुओं की जो ब्रज नागरियों के कुछ केसर से रंजित है, वो नित्य प्रेम भक्ति को प्राप्त करे। ये वरदान है। असंतोष तो भक्त रहता ही है, ये कौन सी वरदान है, लेकिन ये वरदान जो है नारद जी हम लोगों के लिए मांगते हैं। एक बार भी कोई वृंदावन जाता है, लिखा हुआ है एक बार आपके ब्रज लीला को सुनता है, एक बार वृंदावन चला जाता है, बस उसको आपकी भक्ति आपका प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं एवं अस्तु, ऐसा ही हो। तो नारद जी झटपट वहां से उनसे विदा लेकर के आ जाते हैं, कहां प्रयाग आ जाते हैं। आकर के मुनियों से कहते हैं आपने सुना, मैंने इतना घुमा घूम करके देखा, वास्तविक जो ब्रजांगनाएं हैं वो श्री कृष्ण के प्रियसियां हैं, वास्तव में कृपा की पात्री है, क्योंकि उनमें स्वसुख की वासना जरा से भी नहीं है। यदि आप इन बातों को अवलोकन करोगे तो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के चित्त में स्वसुख की वासना है, पर ब्रजवासी जो है उनके चित्त में स्वसुख की वासना नहीं, गंध तक भी नहीं है, इसलिए शुद्ध कृपा की पात्र है। इसलिए आप है मुनिजन, है संत मंडली, आप आज से श्री ब्रजेंद्र नंदन की सेवा उपासना नाम जप में लग जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित जी कहते हैं हे मां, तुम भी इसे जो सार संग्रह है इस चर्चा से, आप भी ऐसा करो, उस मदन गोपाल की आराधना करो और ब्रजवासियों की उस ब्रज रमणियों के अनुगत्य में ही तुम मदन मोहन की आराधना करो, जत किंचित तुम उनके रहस्य को जान पाओगे। इसी प्रकार इस बृहद भागवतामृत के अंतर्गत ये सप्तम अध्याय वाला प्रथम खंड कृपा पात्र सार यहीं पर समाप्त हो रहा है। तासाम नाथम बलविनाम समेतम ताभी प्रेमणा संश्रयन्ति यथोक्तम माता सत्यम तत्प्रसाद महत्वम तासाम ज्ञातुम शक्षसि त्वचम किंचित एतन महाख्यान वरम महारे कारुण्य आप्तारलय निश्चयार्थकम यः श्रद्धया संश्रयते कथंचन प्राप्नोति तत्प्रेम तथैव स्वाप्यरहम। इति श्री बृहत भागवतामृते भगवत कृपा भर निर्धार खंडे पूर्व नामो सप्तम अध्याय समाप्तम च इदं प्रथम खंडम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जत किंचित बहुत भाग दौड़ करके थोड़ा बहुत हम आस्वादन कर पाए, वैसे ये भाग तो बहुत अच्छा था, परंतु एक एक भाग एक एक विषय बहुत मधुराति मधुर हैं। तो हरि की इच्छा से हम जैसे तैसे करके अच्छे से तो नहीं कह पाए और आस्वादन हम भी स्वयं नहीं कर पाए, तो जैसे तैसे हो हरि की इच्छा से यहाँ बृहद भागवतामृतम ये रस पूर्ण कृपा सार जो निर्धार है यहीं पर समाप्त होता है। जो भी जितना हो गया आप लोग घर पे ये शास्त्र को लेकर के अध्ययन कर लीजिएगा, इससे अधिक रस का विस्तार हो सकेगा। और यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद है, विलम्ब हो गया है, 10 बज गया क्या? हाँ, श्री राधे।